teléfono.
यही मेरा हर एक चीज
एक के प्रति समर्पण भाव। मेरा जो गा रही है वो किसके लिए गा रही है, उसे किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना है, उसे किसी को दिखाना नहीं है, उसका चित्त समर्पित स्थिति में। समर्पण कोई क्रिया नहीं है, समर्पण कोई कृत्य नहीं है, समर्पण चित्त की दशा का नाम है। समर्पण अर्थात समर्पण व्यक्ति कब करता है, मजबूरी व्यवहार हो जाती है। डाकू लोग समर्पण करते हैं ना, स्नेह में भी तो हाईएस्ट समर्पण है। अदरवाइज समर्पण कहाँ किया जाता है, समर्पित कर देते हैं डाकू सरकार के सामने, समर्पित कर देते हैं। असहाय स्थिति को जब पहुंचती है तब समर्पित होती है। द्रौपदी ने समर्पित किया, पहले इसको पुकारा उसको पुकारा उसको पुकारा, जब किसी से सहायता नहीं मिली तब एक प्रभु के आगे समर्पण किया। मीरा का समर्पण प्रेम में ही समर्पण है। तो समर्पण उसके प्रति किया जाता है जो अधिक शक्तिशाली है या फिर जिससे बहुत अधिक प्रेम हो। अति प्रेम में समर्पण होता है। तो आज की मुरली समर्पण पर है, सब कुछ समर्पित, संकल्प में सरेंडर। क्या कहा आज बाबा ने, कहाँ से चालू करें, शुरुआत तो पीछे से, पीछे से हम बताए शुरुआत से करें, पीछे से करेंगे,
पीछे से ही करो,
तमिलनाडु
तमिलनाडु से करो।
तो क्या कहा संजय भाई बाबा ने तमिलनाडु को, लॉक
खजाने मिले हैं ना बाबा से, तो माया लूट तो नहीं लेती,
सूक्ष्म खजाने हैं सारे, अविनाशी खजाने में सारे, जिसे चोर लूट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी
डुबो नहीं सकता,
डुबो नहीं सकता, भिगा नहीं सकता, ऐसे ये खजाने। परंतु और क्या कहते हैं, खजाने माया लूट सकती है, चोर तो नहीं लूटता है, पर विकार अगर मन में आ गए तो खजाने कम हो जाते हैं। आंतरिक खुशी, शक्ति और सुख, तीन खजाने बताए आज की मूर्ति में। ये प्राप्तियां कहा, इसको प्रारब्ध कहा, प्राप्तियां कहा, आंतरिक शक्ति, शक्ति आंतरिक सुख और खुशी,
खुशी सुख
जो चाहिए वो ले सकते हो वैसे तो, परंतु ये खजाने हैं, इनको हमारे चित्त निरंतर आनंद की अवस्था में रहे, ये खजाना है, बहुत बड़ा खजाना। परंतु अगर विकारों की प्रवेशता होती है तो ये खजाने कम हो जाते हैं। इसके लिए क्या उपाय बताया, डबल लॉक। ऐसे नहीं केवल याद ही करते रहो और सेवा ना करो, केवल योग में ही लगे, योग भी चाहिए तो सेवा भी चाहिए, तो दिव्य गुण भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। यहाँ पर बाबा ने क्या कहा, डबल लॉक लगाओ, याद का और सेवा का, तो क्या हो जाएगा, खजाने कोई लूट नहीं सकेगा। और क्या कहा तमिलनाडु को, और एक चीज कही, अमृत वेले का महत्व जितना रखेंगे उतना महान बनेंगे। अमृत वेले क्या करो, मास्टर सर्वशक्तिमान का तिलक लगाओ। ये तिलक किसकी निशानी है, विजय की निशानी है। आज बाबा ने बहुत सारे वरदान दिए, एक दो तीन चार, एक तो मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान, दूसरा वरदान अमर भव का वरदान, तीसरा वरदान अथक भव, चौथा वरदान सफलता मूर्त भव, और संगम को कौन सा वरदान है, संगम युग को वरदाता ही आपका हो गया, बीज ही हाथ में आ गया। तो अमर भव, अथक भव, सफलता मूर्त भव और मास्टर सर्वशक्तिमान भव, और संगम युग को वरदान है, वरदाता ही हमारा हो गया। तो जितना अमृत वेले का महत्व रखोगे उतना महान बनेंगे। अमृत वेले बाबा से तिलक लगाओ। ये था तमिलनाडु। दूसरा ग्रुप कलकत्ता का ग्रुप, क्या कहा उसको?
बलि चढ़ते हैं वहाँ,
महाबली,
महाबली
बलि और महाबली, भक्ति में बलि, ज्ञान में महाबली, वो है भक्ति का फोर्स, ये है यहाँ है ज्ञान का फोर्स। मेले के लिए बाबा कह रहे हैं, सेवा के लिए, सेवाओं के लिए, जैसे भक्ति वैसे ज्ञान में, वहाँ भक्ति में बलि चढ़ते हैं, यहाँ
ज्ञान में बलि,
वहाँ बकरे की बलि चढ़ाते हैं, आंशिक रूप में भी ना हो। समर्पण का दूसरा ही नाम है बलि चढ़ना, जो मुरली में पीछे पहले कहा है समर्पण, उसी का दूसरा नाम है बलि चढ़ना। और क्या कहा वहां पे? चेकिंग के लिए कहा ना, चेकिंग करो कैसे चल रहे हैं, चल रहे हैं केवल कि तीव्र किस गति से चल रहे हैं, केवल चलना पर्याप्त नहीं है, किस गति से चल रहे हैं वो देखना। और क्या कहा, चेकिंग कैसे करो, साधारण चेकिंग, महीन चेकिंग, महीन चेकिंग अर्थात चेकिंग की भी चेकिंग, कैसे चेकिंग कर रहे हैं उसकी भी चेकिंग। दिन प्रतिदिन हमारा पुरुषार्थ महीन होता जाए, दिन प्रतिदिन हमारी अवस्था बहुत सूक्ष्म होती जाए, दिन प्रतिदिन हमारे ही अपने मैपन का हमको ज्ञान होते जाए, अपना जो अहंकार है कहाँ कहाँ मैपन आता है उसको हम पकड़े, पता तो चले कहाँ है, उससे मुक्ति बाद में, पहले पता चले कि यहाँ 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 आता है। तो चेकिंग महीन होती जाए। और भी कुछ कहा है वहां पर, प्रत्यक्ष फल खाने की बात है, यहाँ तुम प्रत्यक्ष फल खाते हो, अतीन्द्रिय सुख में सदा रहते हो, यही पर है, यही पर है, जो अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे वही कृष्ण के साथ झूले में झूलेंगे। तो ये था कलकत्ता। तीसरा ग्रुप बिहार, बिहार अर्थात सदा बहार। इस दुनिया में तो कहीं सूखा है तो कहीं पानी है, पर तुम सदा बहार मौसम में मौसम लाने वाले हो। यहाँ पे बाबा ने उन सबको क्या कहा, कर्तव्य की याद दिलाई, मैं कौन हूँ, अवतार हूँ। दो बार मुरली में प्रश्न आया है, अपने आप से पूछो मैं कौन, एक तो ये और दूसरा और एक जगह आया, इन दो पुरुषार्थियों में से मैं कौन, दो पुरुषार्थियों की सूची की नहीं, उन नहीं मुरली में दो प्रकार के पुरुषार्थी में से मैं कौन और इधर मैं कौन, तो मैं कौन हूँ, अवतरित आत्मा हूँ। अवतरित आत्मा को अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलता, उसे निरंतर याद रहता है मैं किस लिए आया हूँ। इसके लिए वो कहीं पर भी बंधता नहीं है, किसी में भी आसक्त नहीं होता, आकर्षित नहीं होता, उसकी स्थिति हमेशा ऊपर रहती है, सबसे प्रेम करता है, सबके बीच में रहता है, परंतु अलित, जैसे सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किसका है, अवतार में जो अनासक्त है वो कृष्ण का है ना, गोपियों के साथ रह रहा है, उनके साथ में लीला कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, परंतु जब जाने का समय आया तो एक धक से निकल गया, बाद में कोई वर्णन ही नहीं है उसके जीवन में, एक बार वहां से निकल गया गोकुल से, बाद में कुछ वर्णन ही नहीं है उसका, क्योंकि उसे वो करते हुए भी स्मरण है कि मैं किस लिए आया हूँ।
उसको एक बार वापस भेजते हैं,
वो नहीं भेजता, वो नहीं आता है, वो उद्धव को भेजता,
हाँ, उद्धव को भेजता,
वो अलग बात है, परंतु वो आना सकता है, वो संपूर्ण, उसे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं, वो सब कुछ करते हुए भी निर्मोही है, ये अवतार की क्वालिटी है। अवतार हमेशा उसे निरंतर स्मरण है मैं किस लिए आया हूँ, परित्राण आय साधु नाथ, विनाश आय च दुष्कृता, इस कार्य के लिए वो आया है, धर्म संस्थापनार्थ, धर्म की स्थापना करने वो आया है, दुष्टों का नाश करने आया है, जो पवित्र है उनको भी पवित्र करने आया है, परित्राण आय साधु नाथ, जो साधु पहले से पवित्र है उनको भी पावन बनाने वो आया है, उन सबका उद्धार करने वो आया है। तो निरंतर कृष्ण को यह स्मरण है, कि मैं किस लिए आया हूँ। तो हमारा कर्तव्य कौन सा है? मूल कर्तव्य, बाबा ने कहा मूल कर्तव्य, बाकी सब निमित्त मात्र है, कुछ भी नहीं है। वो जो तुम कर रहे हो वो हमारा कर्तव्य है ही नहीं, मुख्य कर्तव्य हमारा कुछ और ही है, विश्व का परिवर्तन करना। उसी कार्य के लिए हम आए, विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन करना, आत्माओं को परमात्मा से मिलाना, आत्माओं को दिव्य अनुभूति कराना, अशरीरीपन का अनुभव कराना, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराना, प्रकृति को भी पावन बनाना। कल की मुरली में था ना, सृष्टि को तुम पावन बनते हो, क्योंकि फिर तुम सृष्टि को पावन बनाते हो। संपूर्ण पवित्रता की मंजिल को प्राप्त करना हमारा कर्तव्य, संपूर्ण पवित्र बनना यह हमारा कर्तव्य, विश्व को परिवर्तन करना, विश्व का कल्याण करना हमारा कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी कोई कर रहा है, अगर कोई सोच रहा है कि मैं बहुत अच्छा कुछ कर रहा हूँ, तो बाबा ने कहा यह मूल कर्तव्य है तुम्हारा, तुम विश्व कल्याण की ड्यूटी के इंचार्ज हो। अव्यक्त महावाक्य है कहीं बापदादा के, तुम विश्व कल्याण के ड्यूटी के इंचार्ज हो। तुम कोई अगर अपनी ड्यूटी नहीं करता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, और यहाँ पर वो स्वतः ही निकल जाता है,
आपकी तनख्वाह कम हो जाती है।
सेकंड पॉइंट है तनख्वाह के बारे में, अगर कोई अपनी ड्यूटी ठीक अपने टाइम पर नहीं आता है और ठीक से नहीं करता है, तो उनकी उसकी तनख्वाह कट कर दी जाती है, और यहाँ प्राप्तियों की तनख्वाह कट हो जाती है। तो तुम यह व्यक्त महावाक्य, तुम विश्व कल्याण के ड्यूटी के इंचार्ज हो। हमारा कर्तव्य क्या है ये याद रहता है क्या? अवतार को निरंतर याद है, कृष्ण को याद है, गोपियों के साथ रास करते हुए कि उसे को मारना है, इसको मारना है, उसको मारना है, गीता सुनानी है, पांडवों को मदद करना है, सब स्मरण है उसकी बुद्धि में। सब कुछ करते हुए भी वो फंसा नहीं है वहां पर, वो सब फंसे भले उसमें, परंतु वो उसमें फंसा नहीं है, वो अनासक्त है, चित्त से बुद्धि से मन से सबसे अलिप्त है। तो सब कुछ करते हुए भी इस भागदौड़ में फिर हमारा चित्त निरंतर ये स्मरण है कि मैं किस लिए आया हूँ, किस लिए आया हूँ, विश्व कल्याण के लिए, विश्व परिवर्तन के लिए। कौन कर सकता है विश्व परिवर्तन? जो स्वयं को जिसने परिवर्तन किया है वही विश्व परिवर्तन करता है, और जिसने अन्य की सेवा करते करते ही स्व की सेवा समाई हुई है। विश्व परिवर्तन में स्व सेवा, विश्व कल्याण में स्व कल्याण समाये, वो भी दोनों ही वाक्य सत्य है। पहला वाक्य है पहले विश्व कल्याण करने से पहले स्व का कल्याण, स्व का परिवर्तन। दूसरा वाक्य है विश्व कल्याण करोगे तो स्व का कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। कौन सा ज्यादा सत्य है? क्यों? सबसे पहले स्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन नहीं किया, स्व का कल्याण नहीं किया, तब तक हम विश्व का कल्याण नहीं कर सकते। कल्याण करना अर्थात क्या?
रहम करना,
स्वयं पर रहम करना। क्यों? अपनी दुर्दशा पर रहम करना, अपनी गिरी हुई अवस्था पर रहम करना, अपने चित्त की हुई हुई दुर्गति पर रहम करना, अपने मन में अब तक इतना ज्ञान लेने के बाद में भी बुद्धि में कुछ है ही नहीं, खाली खाली क्यों है? कहा ना मुट्ठी, दो दो मुट्ठी पकड़ के, दो लड्डू, एक में है बीज और दूसरों में है वो चीजें जो कि भूलनी चाहिए थी, भूलने वाली चीजें या फिर विस्तार की चीजें, दोनों को पकड़ के है तो खिसक जाता है बाबा ने। तो दो एक साथ चीजें नहीं मिल सकती, एक ही मिलेगा, भगवान चाहिए या संसार, कौन चाहिए? दोनों में से क्या चाहिए चुनो?
भगवान।
अगर संसार को लिया तो ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्या चाहिए वो डिसाइड करो, वो चाहिए तो सब उसके अंदर सब समा।
भगवान का संसार
ही जीसस क्राइस्ट का दिखाया है, वो अपने शिष्यों को कहता है कि जाओ मेरा संदेश सब जगह सुनाओ। उसके शिष्य वापस आते हैं, हम क्या बोलेंगे, हम क्या खाएंगे, हम कहाँ रहेंगे, उसकी व्यवस्था? वो कहता है सी की फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, पहले भगवान को पालो, भगवान के राज्य को पालो, एंड ऑल दीज थिंग्स, ये जो भी है ये सब एडेड इनटू इट, सब ऐड हो जाएगा। पहले भगवान को प्राप्ति कर लो तो ये सब मिल जाएगा, और केवल संसार के पीछे जाओगे तो ना तो संसार मिलेगा ना ही भगवान मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। ऐसा उल्टा हिसाब रहेगा। इसके पास जाओ तो सब मिल जाएगा, उधर जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा।
संसार का भगवान हो गया।
कहाँ थे हम? मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, मैं अवतार हूँ, मैं अवतरित आत्मा हूँ। इसलिए आया हूँ अपने कर्तव्य की स्मृति और स्वयं की स्मृति। मैं आत्मा इस तन में अभी भी आई हूँ, ये अभ्यास है। मैं आत्मा इस तन में अवतार हूँ, अवतीर्ण हुई हूँ इस तन में। किस लिए? विश्व के कल्याण के लिए। किसने भेजा है, क्यों भेजा है, किस लिए भेजा है? अवतार कब आते हैं संसार में? यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब अवतार इस धरा पर आता है, इस संसार को रोकने के लिए, थामने के लिए। क्योंकि इस्लाम में दिखाया है पैगंबर और हिंदू धर्म में दिखाए है अवतार। हिंदू धर्म में अवतारवाद उधर है, चाहे इस्लाम, चाहे ईसाई या चाहे यहूदी, उसमें है मैसेंजर्स ऑफ गॉड, इमाम जो भगवान के होते हैं, नबी जो होते हैं वो आते हैं, मैसेंजर मसीहा होते हैं वो उधर, वो आते हैं इधर, भगवान स्वयं आते हैं। ये अंतर है दोनों धर्म में, ईस्ट के धर्म और वेस्ट के धर्म में। वेस्ट के धर्म में भगवान नहीं आते, इधर ऐसी मान्यता है कि भगवान स्वयं आते हैं। किस लिए आते हैं? धर्म की स्थापना करने। यहाँ वो उसके लिए भी दिखाते हैं। अकबर कभी पूछता है बिरबल से कि हमारे धर्म में तो अल्लाह कभी नहीं आता है, वो अपने बेटे को भेजता है, मतलब कभी क्राइस्ट को भेजता है, कभी मोहम्मद को भेजता है, मतलब पैगंबर आते, मसीहा आते, और तुम्हारा धर्म कहता है कि सीधा भगवान ही अवतार अवतार लेता है, स्वयं वही आता है, ऐसा क्यों? क्या उत्तर दिया वो? ऐसा क्यों अंतर है?
जो प्यारा होता है उसको वेट नहीं करते दूसरे का कि वो बचाएगा।
ये और भी कुछ है? वो कहता है कि कल मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा, तो वो उसके शिकार के लिए जाते हैं, तो कहता है आपका बेटा भी साथ में चलेगा, उसका बेटा। तो वो क्या कहता है, करता है उसके बेटे के जैसा एक पुतला बना देता है और घोड़े पर रख देता है, बेटा नहीं रहता है, पुतला रहता है, उसको सजा देता है। और वो कहता है अकबर को कि आप आगे रहो, आपका बेटा पीछे है। तो ऐसे चलते चलते दिखाया, एक सैनिक एक कुएं में गिर जाता है, तो अकबर को बताता है, अकबर कहता है जल्दी जल्दी जाओ सब लोग और निकालो उस कुएं में से उस व्यक्ति को। सब लोग जाते हैं, फिर थोड़ी देर में उसको बताते हैं आपका बेटा गिर गया उसमें। तो वो कहता है मेरा बेटा गिर गया? वो कहता है हटाओ। वो जाता है और खुद कूद जाता है उसमें। तो हमारे देश में ऐसी मान्यता है कि इस संसार के सारे लोग जो है वो जो मनुष्य आत्मा है वो परमात्मा की संतान है, और जब संतान को कुछ हो जाता है तो वो पैगंबर को नहीं भेजता, मसीहा को नहीं भेजता, इमाम को नहीं भेजता, नबी को नहीं भेजता है, वो स्वयं अवतरित होता है। विप्र संत सुरधेनु हित प्रभु विविध शरीर, विप्र संत सुरधेनु हित, सबके लिए स्वयं अवतार अवतरित होता है। प्रभु धरि विविध शरीर, अलग अलग शरीर स्वयं वो धारण करता है, ये हिंदू धर्म की मान्यता है। तो हमारा सम्मान क्या है? मैं अवतार हूँ। क्यों आया हूँ? क्योंकि संसार की इस समय दुर्दशा है। कल तो मुरली में बाबा ने कह दिया था, परसों मेरी ही दुर्दशा सबसे ज्यादा कर दी है। सबसे ज्यादा मेरी दुर्दशा कर दी है परसों, था ना? और किसी की नहीं हुई है उतनी ग्लानी, यही है आगे। तो अवतार हूँ, ये निरंतर स्मृति रहे। अवतार हूँ तो किस कार्य के लिए मैं आया हूँ और क्या क्या मुझे करना है? अवतार के कार्य क्या क्या होते हैं? अवतार महान कार्य करने आते हैं, छोटे मोटे कार्य करने नहीं आते, बड़े बड़े कार्य करके जाते हैं अवतार। तो जिसने स्व परिवर्तन किया है वही विश्व परिवर्तन कर सकता है, और विश्व परिवर्तन में ही, विश्व कल्याण में ही, अन्य के कल्याण में ही स्व का कल्याण समाया हुआ है। फिर क्या कहा बाबा ने आगे? हाँ, अभी तो बाबा ने कहा है कि बाहर लाने वाले हो ना, तो कहीं सूखा कहीं पानी, पर तुम बाहरी मौसम लाने वाले हो, तो ये जब तुम करते हो तो तुम्हारे सामने सभी नमस्कार करेंगे, महिमा गाएंगे, पर कोई कोई गालियां भी देते। तो वहां फिर कहा क्या, जितना गालियाँ खाओगे उतने पुष्प चढ़ाएंगे, तो करना क्या चाहिए फिर अभी हमको नेक्स्ट टाइम?
और गालियाँ सुनते रहो, ऐसा काम करो तो गालियाँ।
सबसे ज्यादा बाबा ने किसका उदाहरण दिया, सबसे ज्यादा गालियाँ किसने खाई है? मैंने। ब्रह्मा बाबा को कहते हैं ना, साकार में आता है ना मुरलियों में, जब से आपसे आपने प्रवेशता की तब से मैंने कितनी गालियाँ खाई।
आपको फील हुआ?
और बाबा क्या कहते हैं, तुमसे ज्यादा गालियां तो मैंने खाई।
निकले जाए कहते गालियां खाते थोड़ी है, गालियां तो सुनी जाती।
वंडर भी तो बाबा अभोक्ता है। कल कल की मुरली में था ना, परसों की मुरली में, मैं अभोक्ता हूँ परंतु एक चीज वो खाता है माता जी। कौन सी?
वंडर।
वंडर भगवान को वंडर लगता है। आज तो कहा बाप सहन नहीं कर सकता, सहन शक्ति की कमी है क्या? नहीं सहन कर सकता,
प्यार है,
प्यार है। मैं अभोक्ता हूँ, अकर्ता हूँ। तो मालाएं तैयार हो रही है, बाबा क्या क्या कहा, मालाएं तैयार हो रही है। गालियां खाते हो तो तुम्हारी मालाएं, घबराओ नहीं इसे, गालियों से घबराओ नहीं, ये सोचो कि मालाएं तैयार हो रही है। जितनी गाली उतने ही फूल, फूलों की माला उन्हें चढ़ानी पड़ेगी। तो ये किससे कहा? बिहार से कहा। फिर आगे आसाम, आसाम से क्या कहा? आसामी अर्थात
बड़े
बड़े, आसामी अर्थात कोई सेठ लोग, आसामी अर्थात कोई बड़ा ग्राहक, क्लाइंट, कस्टमर, आसामी अर्थात बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, अलग अलग अर्थ है उसके। साकार में भी आता है ना, सबसे बड़े आसामी कौन, तो तुम सब कौन हो? सबसे बड़े आसामी। हु इज हु, संसार में हु इज हु रहता है, एक एक क्षेत्र में हु इज हु रहता है, विज्ञान में हु इज हु, क्रिकेट में हु इज हु, इसमें उसमें उसमें, मनोरंजन में हु इज हु, तो तुम सब हु इज हु में हो। वो जो हु इज हु वाले वो क्या है?
ऊपर नीचे,
ऊपर नीचे, साधारण प्रजा में आ जाते हैं कभी, आज ऊपर कल नीचे, पर तुम कल्प कल्प के तकदीरवान हो, तुम सदा के पूज्य हो, सदा के पूज्य, कल्प कल्प के पूज्य, आधा कल्प पूज्य और बाद में पहले चैतन्य में पूज्य, फिर जड़ की पूजा होती है। तो तुम जैसा तकदीरवान और कोई नहीं है, सदा के पूज्य, सदा के तकदीरवान। बाप ऐसे ही इसी खुशी, और फिर ये भी पूछा वहां पर, महावीर हो, घबराते तो नहीं हो, नशा रहता है, खुशी रहती है कि हमसे अधिक तकदीरवान और कोई नहीं है। नशा बहुत सूक्ष्म चीज है, नशा के लिए दूसरे जब नशे चढ़े हुए हैं तो ये नशा नहीं चढ़ सकता, ईश्वरीय नशा, ये बड़ा सूक्ष्म नशा है। एक ही नशा बार बार नहीं रह सकता है कि भगवान पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। जैसे जैसे समय बीतते जाता है हमारा नशा भी सूक्ष्म होते जाए, और सूक्ष्म नशा अर्थात ही समान, समान ही सूक्ष्म नशा है कि मैं अवतार हूँ या हमको भगवान पढ़ाते हैं, ये सब सूक्ष्म नशे, उसी को समान कहा जाता है। तो ये था असम। उसके बाद है नेपाल। क्या कहा? नेपाल वालों को सभी कैसे आए हैं, स्नेह की डोर से खींच खींच कर यहाँ आ गए।
उसका रिटर्न,
बाबा ने उसका रिटर्न दिया, उसके रिटर्न में क्या दिया?
वरदान,
वरदान दे दिया, अमर भव, अथक भव, सफलता मूर्त भव। तो उस देश में जंत्र मंत्र, तो यहाँ पर भी जंत्र मंत्र कौन से है? वरदान नहीं, और भी जंत्र मंत्र कौन सा है? वो तो वरदान है, वरदान भी कहा, वो वरदान मनमाना वो है कि शब्द वरदान, जंत्र मंत्र, उस जंत्र मंत्र से जो चाहे वो कर सकते हो, इस जंत्र मंत्र से तुम माया को मूर्छित कर दो, तो माया को मूर्छित करने वाला जंत्र मंत्र कौन सा है? माया को मूर्छित करने वाला जंत्र मंत्र कौन सा है?
ये घड़ी,
हाँ, जब भी याद आओ, यह स्थान, यह दिन, ये घड़ी और ये वरदान, ये चार है जंत्र मंत्र। इस जंत्र मंत्र से माया को मूर्छित कर दो, अर्थात इस स्मृति से। कौन सी स्मृति से? वह दिन,
घड़ी,
वह घड़ी, ये हो गया समय, स्थान, समय और वरदान। बाप ने दिए हुए वरदान, बाप ये स्थान, जिस स्थान में मिलन हो रहा है, और ये घड़ी और ये दिन, ये घड़ी ये दिन ये स्थान ये वरदान, ये जंत्र मंत्र है। इस जंत्र मंत्र से माया को मूर्छित कर दो, माया को मूर्छित कर दो, अर्थात किसको मूर्छित कर दो, विकारों को मूर्छित कर दो, अर्थात विकारों के संकल्प समाप्त कर दो, अर्थात ही ये स्मृति अगर इमर्ज हो गई तो वो स्मृति समाप्त हो जाएगी। विकारों की जो स्मृतियां है, विकारों के जो संकल्प है, काम के जो संकल्प है, क्रोध के जो संकल्प, काम को जीतना है, क्रोध और वो सब अपने आप हथियार डाल देंगे। सरदार को पकड़ लो तो
सिपाही
हथियार डाल देंगे, सरेंडर हो जाएंगे। पकड़ना एक ही को है, क्योंकि एक ही से कामात उपजायते क्रोधा, काम से ही क्रोध और फिर क्रोध से ही सब कुछ आता है। काम अर्थात केवल काम नहीं, काम अर्थात कामनाएं भी सब आ गया उसमें। फिर तो एक सरदार को पकड़ लो तो जो मेन सेनापति है, सिंह द्वार होता है, किला होता है, उसका मुख्य द्वार होता है, उसको सिंह द्वार कहा जाता है। वहां पे जो सेनापति तैनात है, जगदीश भाई ने लिखा है ये जो सिंह द्वार है और इसकी जो दहलीज है वो है देवान, और इस सिंह द्वार पर जो सेनापति है वो है काम। तो इसको अगर पकड़ लो तो बाकी अंदर के जितने हैं वो सब वो अपनी हथियार डाल देंगे, सरेंडर हो जाएंगे। ये स्मृति अगर आ गई तो वो स्मृति नहीं रह सकती, क्योंकि जहां प्रकाश है वहां अंधकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंधकार क्या है, प्रकाश की अनुपस्थिति, एब्सेंस। भगवान के सामने अंधकार जाके कहता है कि इस सूरज को समझा दो, बहुत तंग करता है मुझे, बहुत दुख दिया है उसने, मुझे चैन से रहने नहीं देता, अभी अभी मैं आती हूँ और ये सुबह आके मुझे भगा देता है, और ये अनंत काल से चालू है, आज तक इसके खिलाफ किसी ने कुछ किया नहीं। भगवान कहता है ऐसा, बुलाओ उस सूरज को, इतना निर्दयी कि तुमको इतनी पीड़ा देता है। तो सूरज आकर कहता है, भगवान सूरज से कहते हैं कि तुम क्यों दुख देते हो अंधकार को, क्यों उसे रहने नहीं देते चैन से सुख से, क्या शिकायत, क्यों ऐसे करते हो तुम। सूरज कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं, अगर कहीं है अंधकार तो मैं माफी मांगता हूँ, बुला उसको, परंतु ये केस अभी भी भगवान की फाइल में रखी हुई है, ये मामला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि सूरज के सामने अंधकार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अंधकार प्रकाश की अनुपस्थिति है, तो सूर्य के सामने उसकी अनुपस्थिति कैसे आ सकती है। तो जहां श्रेष्ठ स्मृतियां मर्ज है, वहां समर्थ जहां है वहां पर व्यर्थ आ कैसे सकता है। लोग कहते हैं हमारे व्यर्थ संकल्प, आज बाबा ने कहा मुरली की शुरुआत कहाँ से, अंतिम स्टेज क्या है, विकल्प जीत, विकल्प और व्यर्थ से मुक्त, या फिर विकर्मा जीत, व्यर्थातीत व्यर्थ मुक्त, विकल्पातीत विकल्प मुक्त अवस्था, विकर्मा जीत अवस्था, ये हमारी अंतिम अवस्था है जहां पे व्यर्थ नहीं है। वो कब नहीं होगा, उससे लड़ाई करने से नहीं होगा, अंधकार से लड़ाई करने से अंधकार जाने वाला नहीं है। एक कमरे में 1000 साल से अंधकार है, हम उससे लड़ाई कर रहे हैं शस्त्र लेकर कि निकल बाहर, बंदूक है हमारे पास, तलवार है हमारे पास, वो नहीं जाने वाला है। वहां प्रकाश को ही लाना पड़ेगा, क्योंकि जहां प्रकाश है वहां अंधकार है ही नहीं, अनुपस्थिति का ही नाम वो है। इसका अर्थात हमारे मन में अगर व्यर्थ चल रहा है और हमारे मन में यदि विकारों का आविर्भाव है, संकल्प अभी भी आ रहे हैं, वहां पर श्रेष्ठ संकल्पों की कमी है। मन में अभी भी ज्ञान को समझा नहीं है, मन में ज्ञान को भरो, ज्ञान को बढ़ाओ, तो वो स्वतः ही विलीन हो जाएगा, विसर्जित हो जाएगा। तो बाबा ने क्या कहा, जंत्र तंत्र किसको कहा, ये स्मृतियां, कौन सी स्मृति, कौन सा स्थान, कौन सी घड़ी, कौन सा दिन और कौन सा वरदान। वरदान है अमर भव, वरदान है अथक भव, वरदान है सफलता मूर्त भव। ये अगर इमर्ज है तो वो नहीं रहेगा। जंत्र मंत्र, माया से माया को मूर्छित कर दो, वो हमें मूर्छित ना करे, हम उसे मूर्छित करें, वो बेहोश हो जाए बेसुध। बच्चों की कितनी महिमा करें, कितनी करें, क्या कहा आगे बाबा ने, चिवन भाई कितनी महिमा करे
बात मत
और कितनी करनी चाहिए? बाबा ने क्या कहा? बाबा के शब्द क्या है? जितनी तुमने द्वापर से बाप की महिमा की है उतनी ही बाप महिमा के गीत गाते हैं। माता को क्या कहा बाबा ने? क्या कहा माता ने? बोलो। सारी दुनिया ने जिसको ठुकरा दिया, पद दलित, सारी दुनिया ने उसको ठुकरा दिया, बाप ने उन्हें ठाकुर बना दिया। कितने महिमा करे, हर दिन बाबा टाइटल देते, यही उसकी महिमा।
और
महिमा ही महिमा, महिमा ही महिमा, इतनी महिमा करते हैं। भक्ति में भक्त भगवान की महिमा करते, या भगवान बच्चों की महिमा करते। भक्ति में भक्त भगवान पर विश्वास रखता है, यहाँ पर भगवान को तुम पर विश्वास है। लक्ष्मी नारायण भाई, भगवान को विश्वास है कि तुम ही लक्ष्मी नारायण बनोगे, भगवान का विश्वास है। तो उसके विश्वास को तोड़ना नहीं, जो विश्वास को तोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? विश्वासघाती। बड़े शब्द है, महापातकी, विश्वासघाती, ट्रेटर। उसने हम पर विश्वास किया, भक्ति में भक्त उस पर विश्वास करता है। भक्त को विश्वास होता है ना कि भगवान मेरी रक्षा करेगा। भक्ति में कभी भगवान ने कहा कि मेरा तुम पर विश्वास है? अभी अभी कह रहा है वहां पर, उसका विश्वास है तुम पर। इसके लिए तो चुना ना, उसके कार्य में लगा उसको कि ये मेरे काम के है। इसको यहां से उठाए, उसको वहां से उठाए, इसको यहां से उठाए, पूरे गांव से किसी एक को ही उठाया। इतने सारे गांव में अच्छे अच्छे बुद्धिमान थे, अच्छे अच्छे भक्त भी थे, पंडित थे, भाषा का ज्ञान जानने वाले थे, पर इसको उठाए अनपढ़ को वहां से, जिसको भाषा भी नहीं आती है। उसको लगा ये ही मेरे काम का है। पूरे गांव में से एक बस यहाँ उठा के यहाँ रख दिया। तो विश्वास था, इसके लिए किया ना। तो अगर उसने हम पर विश्वास किया है तो विश्वासघात नहीं करना। और क्या कहा नेपाल वालों को? और एक पैराग्राफ है लास्ट, घर घर में बाप का यादगार हो, जैसे राजा रानी का चित्र रखते हो वैसे यादगार। बाप का यादगार अर्थात क्या? प्रदर्शनी और गीता, गीता पढ़ सर, और
पीस ऑफ माइंड। वो भी तो गीता पाठ है, जिसके घर में गीता चल रही है, मुरली चलती है, क्लास चलती है, आधुनिक
आधुनिक
डिजिटल क्लास आधुनिक। क्या
बोला? जैसे घर घर में चित्र रखते हो वैसे घर घर में बाप का यादगार हो। इसमें केवल गीता पाठशाला की बात नहीं, अगर सूक्ष्म में जाए तो उसका यादगार क्या है? क्या यादगार है? उसका स्वरूप बन जाना, वही यादगार है ना। वो उसका सच्चा यादगार तो वो चैतन्य म्यूजियम बन जाना, गृहस्थ आश्रम बन जाए। एक बात और रह गई बिहार में,
जो बड़े लोग
नहीं, परिवार या परिवर्तन, गृहस्थी में सेवाधारी, क्या समझते हो अपने आप को? सेवाधारी या
परिवार याद रहता है,
परिवार याद रहता है या परिवर्तन?
किस कार्य के लिए अवतरित उसमें है ये?
हाँ वही अवतार में ही। तो ये था पार्टियों से मुलाकात, क्या सार है उसका? सबसे पहला तो कि मैं स्नेह की डोर में बांधा है उसको हमने, इसके लिए वो उसने वरदान दिए उस स्नेह के रिटर्न में। तीन वरदान दिए और माया को मूर्छित करना है, यादगार घर घर में हो, उसके बाद में नेक्स्ट सबसे बड़े आसामी हम है, हु इज हु में हम है, और अवतार हम है, उसके बाद में महाबली चढ़ने वाले हम है,
महावीर
महावीर हम है, महाबली चढ़ने वाले हम है, उसके बाद में चार्ट भी कैसा हो, महीन होता जाए हमारा,
चल रहे हैं।
एक है चार्ट लिखना, एक है दिनचर्या लिखना, दो चीजें, कौन सी अच्छा है? आसान कौन सा है? दिनचर्या लिखना। चार्ट भी लिखना है परंतु दिनचर्या भी लिखना है, उसमें भी आनंद है। अपनी दिनचर्या लिखना रोज कि क्या क्या किया, सुबह से लेकर शाम तक, चार्ट उसमें भी इंक्लूड हो सकता है, परंतु दिनचर्या लिखने का भी अपना एक महत्व है। दिनचर्या से हम हमारे विचार ही स्पष्ट होते हैं, हमने आज क्या क्या किया। उसमें कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो अविस्मरणीय घटनाएं हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होगी कि जिसमें हमारा चित्त, चित्त की दशा, मूड, दृष्टिकोण थोड़ा परिवर्तन हुआ है उस दिन, कुछ और संकल्प आए, कभी डाउन है कभी अप है, उसको लिखना अपने ही विचारों को। तो चार्ट लिखना एक बात है, दूसरी बात है दिनचर्या को लिखना। कई महान आत्माएं अपनी दिनचर्या लिखते हैं संसार में भी, उन्होंने तो पूरा जीवन चरित्र लिखा, वो अलग बात है। रोज का दिनचर्या रोज लिखना और फिर संडे को वो पूरा देखना, मंडे से लेकर तो सैटरडे तक क्या क्या लिखा, क्या क्या हुआ, ये हफ्ता कैसा गया, उससे भी हम अपनी चेकिंग अच्छी कर सकते, महीन चेकिंग।
तभी तो कह रहे हैं
मैंने लिखना चालू किया था 98 में सेकंड MBBS में, तब से लेकर अब तक।
पहले ज्ञान से पहले लिखना,
हाँ ज्ञान से, ज्ञान में तो बहुत बाद में, ज्ञान से पहले हर दिन क्या क्या हो रहा है, क्या क्या किया, क्या क्या किया। अभी आज मेडिकल फील्ड, आज एडमिशन हुई, अभी आज पहला दिन, रैगिंग ये सारा एक एक दिन का, कैसे बचे, कैसे यहाँ से वहां गए, कैसे भगवान ने भक्ति ने रक्षा की, मतलब गायत्री मंत्र से कैसी रक्षा हुई, वो सब।
कितना समय लगता है?
5 मिनट 10 मिनट, कभी कभी बहुत लिखेंगे, कभी कभी कुछ भी नहीं, कभी कभी ऐसा लगेगा कि बहुत नहीं लिखो, पर कभी कभी बहुत ज्यादा लिखते हैं हम, कि जिसमें बहुत सारी जो पीछे छूटी हुई बातें वो भी लिखते हैं। तो लिखने से हमारे मन की माइंड क्लियर होता है, जो समस्या है जीवन की वो और स्पष्ट होती है। केवल लिखना, जैसे हमने शुरुआत की अमृत वेला, अमृत वेला कितना बजे, फिर अमृत वेले का कैसी स्थिति, फिर उसके बाद में मुरली, फिर उसके बाद में चिंतन कैसा किया, क्या क्या चिंतन किया, चिंतन की कोई नई पॉइंट तो आई उसमें या नहीं आई, फिर उसके बाद में क्या क्या और हुआ, जो जिसका कार्य क्षेत्र है उसमें और कोई नई बात तो नहीं हुई, किसी से टकराव, हम नहीं चाहते फिर भी अगर दूसरा आके टकराए, मतलब इस तरह की जो भी बातें हैं, शाम का योग, फिर ये और लास्ट में, मतलब मैं भक्ति में ऐसे लिखता था कि मतलब वहां पर भी जो लिखा वो सब भगवान को ही एड्रेस किया हुआ है, उसका परिचय तो नहीं है परंतु उसी को एड्रेस किया हुआ है सारा, मतलब वहां पर शब्द थे हे प्रभु, हे ईश्वर, ओ लॉर्ड।
पहले आपने वो मानव पत्र लिखा, भगवान पत्र आपको भेजना
चाहता था, मतलब एक बात पता नहीं है कि लिखना जो है हम किसी व्यक्ति को नहीं लिख रहे, अपने मतलब एक उसको बता रहे, सब कुछ उसको एड्रेस कर रहे, उसको बता रहे आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, उसको सब कुछ अपनी दिनचर्या बता रहे।
अंतःकरण भी शुद्ध,
अंतःकरण शुद्धि होती है, विचार स्पष्ट होते हैं और लिखने की हमारी कला भी विकसित होती है ना, हम लिख रहे हैं उसमें कुछ कुछ नया नया डाल रहे हैं, तो वो उससे। और कभी कभी ऐसा ही नहीं कि हम केवल दिनचर्या लिखे, कभी हमको लगा तो उसमें हम कुछ विचार सागर चिंतन भी लिख सकते, कुछ किसी ने नई बात बता दी वो भी हम लिख सकते, कुछ ऐसा कुछ आ गया कि एकदम नया अनुभव था जो पहले कभी नहीं हुआ, वो अनुभव भी हम उसमें लिख सकते। तो लिखना बहुत जरूरी है, दिनचर्या किसी भी भाषा में लिखो, अगर डर है कि कोई पढ़ ना ले
अपनी भाषा में
तो उसमें फिर कोड वर्ड डाल दो, किसी का नाम नहीं आया उसमें, नाम आए तो कुछ ऐसे कर दो शॉर्ट हैंड में लिखो, चलो डर रहता है ना कि कोई पढ़ना ले तो, किसने पढ़ लिया तो। और कभी कभी ऐसा होता, मेरे साथ भी हुआ कि बीच में एक दो मार्क छूट गया, बीच बीच में ऐसे हुआ कि पता नहीं आप ही छूट गया, फिर याद आई, फिर स्मरण आया कि नहीं लिखना चाहिए, फिर वापस लिखना चाहिए, क्योंकि एक दो दिन की बात नहीं है, लंबा समय की बात है। तो लिखना जरूरी है, एक डायरी लो और आज से लिखना चालू करो, उसमें कुछ नई पॉइंट आई है, मुरली की कोई बहुत ही नई पॉइंट है जिसने एकदम हमको टच कर दिया, जो आज तक सुनी तो बहुत बार है पर कभी वो अंदर गई नहीं, पहली बार बहुत बार सुना है, ऐसा नहीं कि नहीं सुनी है, परंतु आज पहली बार लगा कि वो मेरे लिए थी, उसको भी लिखता हूं उसमें। तो एक है दिनचर्या लिखना और फिर उसमें चार्ट लिखना। चार्ट लिखना ऐसा है कि लोग चार्ट लिखते हैं पर वो फिर इतना रूटीन हो जाता है कि बस यस नो यस नो यस नो, परसेंटेज अमृत वेला यस, मतलब 5 मिनट पहले 3-4 दिन ठीक, फिर बाद में रूटीन,
लास्ट में महीने में इकट्ठा कर देंगे।
तो तो दोनों चीज करनी है। तो बाबा ने कहा तुम्हारा चार्ट तुम्हारी चेकिंग भी कैसी हो, महीन महीन चेकिंग। फिर लास्ट में अमृत वेला स्वयं को तिलक दो, जितना अमृत वेले का महत्व रखोगे उतना ही
महान
बनोगे। हाँ फिर डबल लॉक वाली बात है, डबल लॉक मतलब दोनों ही चीजें साथ साथ हो, सेवाएं भी करनी है तो साथ साथ याद भी हो। और अभी जो मुरली में होमवर्क दिया बाबा ने क्या, काम काज करते भी याद, अंदर कौन कौन इसके दिल में कौन। चलो अभी मेन मुरली क्या कहा शुरुआत से, अंतिम स्टेज विकर्माजीत स्टेज विकल्प मुक्त व्यर्थ मुक्त स्टेज को देख रहे हैं। और क्या क्या देखा, पुरुषार्थ सब कर रहे हैं परंतु क्यों करता है,
कोई मोहब्बत में कोई नहीं।
तो दो है, एक वो है जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, दोनों पुरुषार्थी है,
दोनों
पुरुष, एक यथार्थ एक अयथार्थ, अयथार्थ शब्द नहीं है, एक यथार्थ, एक यथार्थ पुरुषार्थी, चलो दूसरा अयथार्थ ब्रैकेट में अयथार्थ। तो पहला पुरुषार्थी जो है अयथार्थ पुरुषार्थियों की क्या कहनी चाहिए, अयथार्थ कि पुरुषार्थ तो कर रहे हैं परंतु प्राप्ति का अनुभव नहीं है, प्रारब्ध का अनुभव नहीं है, एक दूसरा थकावट का अनुभव है,
सोचते हैं ये भविष्य,
तीसरा मेहनत का अनुभव है। सबसे पहला है कि प्राप्ति साथ साथ नहीं हो रही, दूसरा मेहनत, और क्योंकि मेहनत है इसके लिए थकावट। वो क्या सोचते हैं कि हम नहीं, वो हम चल रहे हैं,
सामना करना पड़ता है,
चलना पड़ता है, हम चल रहे हैं। यहाँ पाव जो है वो मेहनत के पाव है। फिर क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं कि एक का लाख गुना जो बाबा ने कहा है वो
भविष्य
अब का नहीं है, वो भविष्य का, ये जो है ये भविष्य का दिलासा पर रहने वाले इधर वाले, ये जो है वो भविष्य फल के उम्मीदवार है इधर वाले, ये जो है ये मेहनत की रेखाएं हैं उनके पास इधर वाले। अब इधर वाले तो यथार्थ पुरुषार्थी वो कैसे हैं, सबसे पहले तो पुरुषार्थ करते करते ही प्राप्ति का अनुभव है, पुरुषार्थ करते करते ही प्रारब्ध का अनुभव है, पुरुषार्थ करते करते ही पुरुषार्थ की मंजिल पर पहुंचना नहीं पहुंचना वो बात की बात है, परंतु पहले ही मंजिल तो पहुंची नहीं है, परंतु पहले ही अनुभव हो रहा है कि प्राप्ति हो रही है, एक तो ये, दूसरा वो मोहब्बत में मस्त है, उधर मेहनत है वो मोहब्बत में मस्त है, तीसरा थकावट नहीं है, क्यों थकावट नहीं है, स्नेह की गोदी में है, स्नेह के पाव, उधर मेहनत के पाव, इधर स्नेह के पाव, इधर स्नेह की गोदी, स्नेह का झूला, स्नेह का झूला, मोहब्बत का झूला, मोहब्बत की गोदी, स्नेह के पाव, चल नहीं रहे उड़ रहे हैं, उधर चलना भी संदिग्ध है, उधर जो है वो चलने के बारे में कुछ यहाँ चल नहीं रहे, यहाँ उड़ रहे, क्यों हो रहा है ये सब, एक संकल्प का अंतर है, ये जो भी हो रहा है संकल्प का अंतर है, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि हमें वो चला रहा है, संकल्प में भी सदैव कहा बाबा ने, सदैव कभी कभी नहीं, सदैव संकल्प में भी सरेंडर है, समर्पण है। तो ये सब सारा खेल ही पूरा मुरली जो है वो किसके ऊपर है, समर्पण भाव के ऊपर है। जैसे कहा कि समर्पण कोई क्रिया नहीं है, समर्पण कोई कृत्य नहीं है, समर्पण कोई पर्टिकुलर वेशभूषा पहनना नहीं है या कुछ तो लगा लेना नहीं है, कोई चिन्ह लगा लेना, इसका समर्पण से कोई संबंध नहीं है, समर्पण चित्त की दशा है, समर्पण आंतरिक भाव है, समर्पण एक स्थिति है मन की कि जिसमें वो सरेंडर हो चुका है, अंदर ही अंदर उसको ही सर्वस्व मान चुके हैं। संसार से बुद्धि निकल गई है। सरेंडर वो नहीं है जिसमें दिखावा है, आडंबर है, शो है, उससे भी ऊपर। जैसे मीरा का उदाहरण कहा ना कि मीरा किसी प्रतियोगिता के लिए नहीं गाने गाना गाएगी, उसे किसी पार्टी किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट होके फर्स्ट नहीं आना है सिंगिंग कॉम्पिटिशन में। उसके जो गीत निकल रहे हैं वो किसके लिए निकल रहे हैं? वो ईश्वर के लिए निकल रहे हैं। उसके अंतर के अंतस के भाव है वो जो प्रकट हो रहे हैं, वो इतने भर गए हैं कि वो प्रस्फुटित हो रहे हैं उसके गीतों के द्वारा। अकबर कभी तानसेन को पूछता है कि मुझे नहीं लगता कि सारे संसार में तुमसे बड़ा कोई गायक है, असंभव है, मुझे लगता ही नहीं कि तुमसे भी बड़ा। इतना प्रभावित था तानसेन से अकबर कि मुझे लगता नहीं कि तुमसे बड़ा कोई होगा, परंतु शायद शायद कोई हो तो बताओ। मतलब वो कहता है कि कोई है या तुम्हारा भी तो कोई गुरु होगा कि जिसने तुमको सिखाया, और शायद मतलब पता नहीं मुझे कि तुमसे तो बड़ा नहीं होगा, परंतु ऐसा हो सकता है कि शायद जिसने तुमको सिखाया वो तुमसे बड़ा हो, ऐसा भी कोई है? तो कहता है हाँ है, मेरा जो गुरु है वो मेरे से भी बड़ा है। तो फिर तुम्हारा इतना गायन, उसका नाम क्या है? वो कहता है उसका नाम है हरिदास, हरिदास उसके गुरु रहते। तो कहता है कि फिर मैंने तो कभी सुना ही नहीं कि तुम्हारा भी कोई गुरु है, मैं तो समझता था कि इस सारे संसार में तुमसे अधिक दूसरा कोई गाना गा ही नहीं सकता है, तो क्या मुझे तुम उससे मिलाओगे, तो क्या मैं उसका गीत सुन सकता हूँ? बोलता है नहीं सुन सकते तुम, क्योंकि वो जो गाता है किसी के मेरे और उसमें कुछ अंतर है दोनों में। मैं आपको प्रसन्न करने के लिए गाता हूँ, मुझे चिंता है अपने परिवार मैं आपको प्रसन्न करता हूँ, परंतु उसको उसका गाना सुनना इतना आसान नहीं है। पर अकबर कहता है कि नहीं मैं सुनना ही है, मुझे कैसे भी करके उसका गाना सुनाओ। तो कहता है कि वो मेरे जो गुरु है उसका कोई टाइम नहीं है गाने का, वो कभी भी गाता है, रात को 2 बजे उठ के गाता है, रात को 3 बजे उठ के गाता है, कभी भी उठ के गाता है। और वो जो गाता है वो अपने कृष्ण के लिए गाता है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं गाता है। अगर उसको ये कहा जाए कि तुम गाओ तो वो कभी नहीं गाएगा, क्योंकि उसका प्रेम केवल एक से है और वो केवल एक के लिए ही गाता है। उसे संसार से कोई लेना देना नहीं है, वो जो गाता है उसको किसी प्राप्ति की अभिलाषा नहीं है। मैं तो आपको गाता हूँ ताकि आप खुश हो, मुझे कुछ दो, मेरा परिवार चले, मैं भले कितना भी अच्छा हूँ, परंतु वो निस्वार्थ है। तो वो दोनों जाते हैं वो हरिदास के पास, चुपके से बैठते हैं रात को 12 बजे से, और अचानक 2 बजे 2:30 बजे उसका गाना सुनाई होता है। वो एकदम रोने लगता है और गाने लगता है और वो भजन गाने लगता है कृष्ण के। तो वो सुनकर अकबर की आंखों में पूरे आंसू आ जाते, इतने आंसू आते हैं रोना चालू करता है। वो कहता था कि तानसेन मैं तो समझता था तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो, इसके सामने तो तुम कुछ भी नहीं हो। तो समर्पण भाव है उसमें, कोई दिखावा नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, कोई शो नहीं है, वो ऐसा समर्पण भाव है। वो कोई समारोह नहीं है, समर्पण समारोह दादी के साथ फोटो, इधर फोटो उधर फोटो, इससे कोई लेना देना नहीं है समर्पण का। फिर उसकी सीडी, उसका वीडियो, फिर इधर इधर प्रोग्राम, फिर सेंटर पर प्रोग्राम, फिर उधर प्रोग्राम उधर प्रोग्राम। समर्पण तो मन की दशा है, मन की अवस्था है, निरंतर रहने वाला एक भाव है कि जिसमें व्यक्ति उसके प्रति समर्पित है, ये समर्पण है उसका। उससे कुछ पहनने से, जैसे जगदीश भाई ने कहा है ना, एक बहुत सुंदर लेक्चर है जगदीश भाई का, आदर्श ब्रह्मा कुमारी कौन, आदर्श ब्रह्मा कुमारी कौन, सबने सुनना चाहिए, बहुत सुंदर लेक्चर है। उसमें कहा है उन्होंने, शायद कन्याओं का ट्रेनिंग चालू है वहां पर दिया हुआ वो लेक्चर है, उसमें क्या कहा है उन्होंने, ब्रह्मा कुमारी ये अर्थात ये नहीं कि भाई सफेद साड़ी पहन ली और बैच लगा लिया, ब्रह्मा कुमारी अर्थात जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण अर्थात जो यज्ञ करे यज्ञ कराए, पढ़े पढ़ाए, जो जनेऊ पहने पहनाए, जो दान दे दान ले, ये है ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा कुमारी अर्थात जो हर दिन ज्ञान सुनाए। उसको उन्होंने क्या कहा उस लेक्चर में कि जैसे अगर स्नान नहीं करते तो वो वैसा है, ज्ञान ना सुनाना अर्थात स्नान नहीं करना, एक दिन भी स्नान नहीं किया तो कैसे लगता है, तो वैसे लगना चाहिए। अगर किसी को ज्ञान नहीं सुनाते, किसी को भी सुनाओ पर सुनाओ, चाहे पड़ोसी है, चाहे बच्चा हो, कोई नहीं मिला तो बच्चे को सुनाओ, अगर बिल्कुल ही कोई ना मिला तो स्वयं स्वयं को ज्ञान सुनाओ, प्रकृति को सुना दो ज्ञान, दीवार कुछ किसी को भी। परसों मुरली में लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बैठ गए तो, और एक चीज उसमें कहा है, ब्रह्मा कुमारी अर्थात अनटच्ड, ब्रह्मा कुमारी की परिभाषा अर्थात अनटच्ड, किसी भी पुरुष का विकार की भावना से जिसको स्पर्श ना हुआ हो वो ब्रह्मा कुमारी अनटच्ड। तो हमसे कहा समर्पण पर, तो समर्पण अर्थात तन का, मन का, धन का, संबंध संपर्क का, संस्कारों का, बुद्धि का, ये सारे समर्पण के प्रकार है। पहले तो तन का समर्पण, मन का समर्पण, बुद्धि का समर्पण, संस्कारों का समर्पण, संबंध संपर्क का समर्पण, हर कर्म का समर्पण, कर्म के परिणाम का समर्पण, सात प्रकार के समर्पण, सब कुछ समर्पित। ये मानसिक दशा है। अच्छा, फिर आगे क्या कहा बाबा ने, हम कहा थे दूसरे नंबर के पुरुषार्थी पर, तो ये जो पुरुषार्थी है वो कैसे है, संकल्प भी सरेंडर, बाप दादा हमें चला रहा है, पुरुषार्थ करते करते प्राप्ति का अनुभव हो रहा है, इनके चेहरे से त्याग नहीं दिख रहा है, भाग्य दिख रहा है, उधर भाग्य त्याग ज्यादा दिखाई पड़ता है, भाग्य कम, इधर भाग्य ज्यादा दिखाई पड़ता है, त्याग कम, भाग्य की महसूसता, त्याग की महसूसता। लोगों के लिए भी कहा ना, लोग अभी क्या कहते हैं, त्याग दिखाई पड़ता है, त्याग इनका बहुत बड़ा है परंतु भाग्य गुप्त है, तो यहाँ अभी ऐसा दिखाई दे कि भाग्य आप के लिए वो कहे कि आपका भाग्य बहुत बड़ा है, और ये कहते कहते ही सेकंड में भाग्य स्वयं के भाग्य खुल जाएगा, ये कहते कहते ही, ये बोल बोलते ही भाग्यशाली बन जाएंगे, भाग्यशाली बन जाएंगे और सेकंड में उनका भाग्य खुल जाएगा अगर ऐसा हो तो। तो ये सेकंड नंबर के पुरुषार्थी, और सेकंड नंबर के पुरुषार्थी के लिए क्या कहा, सदा खुशी की झलक, ब्राह्मण जीवन अर्थात ही सदा खुशी की झलक, खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, ये सेकंड पुरुषार्थी है जो यथार्थ पुरुषार्थी है। और फिर विस्तार किस बात का किया, एक का लाख गुना। पहले नंबर वाले क्या सोचते हैं, जो अयथार्थ पुरुषार्थी है कि ये गायन कब का है, परंतु ये भ्रांति है उनकी जो बाबा यहाँ भंग कर रहे हैं, ये भ्रांति, ये जो मैंने कहा हुआ है उसको ये मत समझना कि वहां के लिए कहा हुआ है, वो यहाँ के लिए है, एक साल लाख गुना नहीं, अनगिनत, अगणित, असंख्य गुना, गणनातीत, वो यहाँ का है, एक का लाख गुना वो यहाँ का गायन। क्या क्या एक का लाख गुना, क्या क्या, जो चाहे वो ले सकते हैं, जो चाहे वो ले सकते हैं, क्योंकि बीज इस समय तुम्हारे हाथ में है, बीज ही हाथ में है इस समय तुम्हारे, वरदाता बसंगम युग को वरदान है, वरदाता ही हमारा हो गया है। तो जहाँ जी क्या हजूर, यहाँ हजूर हाजिर है, सर्व प्राप्ति उदाहरण दिया सेवाधारी का, जैसे उसको बुलाते हैं वैसे संकल्प से इसको बुलाओ तो सर्व हाजिर है, बीज है तो सारे फल हाजिर है, बीज है तो सारी प्राप्तियां हाजिर है, अगर हजूर गैर हाजिर है तो प्राप्तियां भी गैर हाजिर, फल भी गैर हाजिर, फिर प्रत्यक्ष फल नहीं खा सकते, वो जो पुरुषार्थी है प्रत्यक्ष फल खाने वाले और वो उम्मीदवार है। और क्या कहा यहाँ पर, यहाँ पे और दो तीन बातें, हाँ, बाप बंधा हुआ है सर्वेंट के रूप में, जब चाहो जो चाहो जैसे चाहो देने के लिए, ये सर्वश्रेष्ठ समय है, सर्वश्रेष्ठ जन्म है, सर्वश्रेष्ठ टाइटल है, जैसे ये उसी समय उसी तरह वरदान की प्राप्ति और सर्व प्राप्तियों का अनुभव यहाँ, जैसे वो यहाँ कहते हो वैसे ये भी यहाँ, तो वो जो गायन है एक का लाख गुना उधर का नहीं है, यहाँ का है, अभी सब कुछ मिल रहा है, मतलब पुरुषार्थ कर रहे हैं अभी संपूर्ण बने नहीं है, परंतु करते करते ऑन द वे ही सारी प्राप्ति है, तो ये यहाँ का गायन भविष्य वर्तमान भविष्य से श्रेष्ठ है, ये भी कहा है, वर्तमान भविष्य से भी श्रेष्ठ है, सब कुछ यहाँ प्राप्त हो रहा है। और क्या कहा, जो चाहे वो ले सकते हो। फिर वो दो लड्डू की बात आ गई,
विस्तार में चले जाते
हैं, एक में बीच एक में विस्तार, जो भूलना है वो इसको लिया तो ये चला जाता है, खिसक जाता है, फिर खाली खाली महसूस होता है, फिर उसके बाद में प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है। फिर उसके बाद में क्या कहा, वो भाग्य की बात, भाग्य दिखाई दे और उसके बाद बाद में वो लाइट चली गई। पिछली बार भी गई थी, बहुत जा रही है। पिछली बार बाबा ने कहा इससे भी तुम सीखो, जैसे ये एक सेकंड में आत्माओं की आवाज सुनो, रहम दिल बनो, आत्माओं की पुकार सुनो, जाओ उपकार करो और वापस आ जाओ, ये अभ्यास करो, ये सीखो, ये लाइट का आना और जाना जैसे ये सेकंड में होता है वैसे ये सेकंड में करो। और अभी क्या, ये लाइट भी बाप को सिखाने आई है, क्या अनुभव कराने है कि बच्चे कैसे अंधकार में रहते उसको अनुभव, उसके लिए लाइट गई है, वो तो सूर्य है
नहीं, वो बाबा अंधकार का वो सुन लिया, सूरज कैसे तकलीफ देते हैं।
फिर लास्ट में और भी कुछ है, एक लाइन के झूले में
था,
वो एक ही पार्टियों के इसमें है कि अतीन्द्रिय सुख का समय यहाँ है, पर यहाँ और एक चीज है किसके पास, लास्ट लाइन कुछ है, प्रत्यक्ष फल खाने का समय अभी है, लाइट जाने के बाद,
लाइट तो चलेगी,
अभी क्या करना है,
भविष्य फल के पहले प्रत्यक्ष फल,
हाँ वही फल वाली बात है ना, भविष्य फल के पहले प्रत्यक्ष फल,
हजूर
वही वापस हजूर हाजिर वाली बात है, अगर वो बुद्धि में है
जो बीस से निकले हुए,
हाँ ये सामान दिया यहाँ बीस से निकले हुए, डायरेक्ट तना स्वरूप आत्माए है, बीच डायरेक्ट बीच से निकले हुए तना स्वरूप आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, ब्राह्मण आत्मा, ये कहा ऐसे बच्चे को सर्व प्राप्ति सहज अनुभव होती है, एक सेकंड में प्राप्ति अनुभव होती है, जो चाहे वो प्राप्ति अनुभव होती है,
और यहाँ चुंबक की बात,
हाँ वो सारी प्राप्तियां चुंबक की तरह आकर्षित करती है, आत्माएं स्वतः ही आ जाती है, स्वतः ही जीव हजूर करती है और चुंबक की तरह आकर्षित हो जाती है।
दो चार पॉइंट बाद में दिया,
तो सारी मुरली से धारण करने की, ये मुरली से धारण करने की बात है सरेंडर, समर्पण, क्योंकि जो संकल्प से भी सरेंडर है उनको कोई मेहनत नहीं लगती, उनको वही स्नेह की गोदी में है, उन्हीं अभी सारी प्राप्ति हो रही है, उन्हीं से भाग की नजर आता है, त्याग नहीं, वही प्रत्यक्ष फल खाते हैं, सारी बातें जितनी कही उन्हीं को एक का लाख गुना अभी मिलता है, उन्हीं के सामने जिनके पास हजूर है उन्हीं के सामने शक्तियां प्राप्तियां हाजिर है, आकर्षित होती है, उन्हीं का चेहरा चमकता है, वो अथक रहते हैं, हजूर हाजिर मतलब वहां पे उनको मेहनत नहीं लग रही है, वो मोहब्बत में मस्त है, ये जो ये कितनी सूक्ष्म बातें है, इन शब्दों के अर्थों के नीचे बहुत डीप भाव समाया हुआ है, बाबा चाहता क्या है एग्जैक्ट, वो उसमें दिखाई दे रहा है, वो ये नहीं चाहता है, कहा ना सहन नहीं कर सकते बाबा, मेहनत नहीं सहन कर सकते, जब कुछ इतना सहज प्राप्ति हो रहा है तो यहाँ बात है सहज बनाने की, वो बनेगा सहज अपने स्वरूप में स्थित होने की, स्थित होने से, स्नेह बढ़ाने से, स्नेह भी कैसे बढ़ेगा उसके प्रति, समर्पण भी कैसे होगा उसके प्रति, क्या करे उसको जानने से, उसको समझने से, उसके प्यार से जो जो प्राप्तियां होती है वो जितनी इमर्ज रहेगी तो संसार की प्राप्तियां गौन लगने लगेगी, वो नहीं छूटेगी तब तक, संसार नहीं छूट सकता जब तक कि कुछ तो बड़ा ना मिल जाए हमको, कुछ बड़ा मिलेगा तो ही छोटा छूटेगा, बड़ा लड्डू चाहिए, एक छोटा लड्डू तभी छूटेगा, तब कहेंगे कोई छोटा लड़का अगर बड़ा लड्डू ले ले उसको ये कहा जाता है कि तुमने तो छोटा लड्डू का त्याग कर दिया, वो कहेगा काहे का त्याग, मुझे तो बड़ा मिल गया, तो उसको त्याग थोड़ी कहा जाता है, दो लड्डू दिए जाए एक बच्चे को, एक बड़ा एक छोटा, बड़ी कैडबरी छोटी कैडबरी कौन सा लेगा, बड़ा लेता है, इसका मतलब छोटे का त्याग किया उसने, तो वैसे संसार छोटा हो जाए और भगवान बड़ा हो जाए, तो वो हमने बड़ा ले लिया ना, तो ये तो त्याग इसको कहेंगे नहीं, ये तो भाग्य है कि बड़ा मिल गया। और एक चीज है उसमें, एक पॉइंट रह गई हमारी, बाप को तुमने अपना बनाया एक संकल्प से, क्या कहा, बाप को हमने अपना बनाया, तो उसने भी इस एक संकल्प के रिटर्न में सारे संगम युग की जीवन में वो तुम्हारा बन गया। कहते संकल्प वचन और कर्म से अनुभव करा रहा है तुमको कि मैं भी तुम्हारा हूँ। हम सरेंडर हो गए तो वो भी सरेंडर हो गया, वो भी कहता है कि मैं भी तुम्हारा हूँ, हम तुम्हारे हैं, हमने कहा, उसने कहा मैं तुम्हारा हूँ। तो ये संकल्प की बात है। और भी कोई पॉइंट रहेगी ये तो बोलो, माता जी कुछ तो बोलो।
साकार ही साकार
थोड़ा ही बोल लो। माता को बहुत खुशी होनी चाहिए,
आज तो ठाकुर बना दिया ना,
ठाकुर बना
दिया।
तो यही समाप्त कर लो।
आपको वैराग्य कब आया?
वैराग्य
कौन सी घटना घटी? तो
नहीं, घटना तो नहीं घटी, जैसे मेरे ट्वेल्थ की परीक्षा थी वो पूरी हुई, तब तक मैं कहूंगा अंधकार में जीवन है, पता ही नहीं तब तक क्या हुआ। ट्वेल्थ क्लास की एग्जाम दी, एग्जाम के बाद में जो चल रहा था वही चालू था। ट्वेल्थ क्लास की एग्जाम दी, ट्वेल्थ तक खाली पढ़ाई करते थे हम लोग, कुछ दूसरा कुछ किए नहीं ट्वेल्थ की। उसके बाद में हमारे पिताजी ने वो एक किताब लिखी, एक मेडिकल की एग्जाम होती है सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज की, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अतिरिक्त एक गांधीयन थॉट्स करके सब्जेक्ट होता है, जहां पर सेवाग्राम में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलती है। वो गवर्नमेंट का नहीं है, वो अपना ही ऑटोनोमस बॉडी है। तो वो मेरे पिताजी किताब लेके आए, तो गांधीयन थॉट्स एक विषय होता है उसमें, तो उसमें गांधी जी की जीवन कहानी दो तीन किताबें। तो वो तब तक तो सब जैसे कि अंधकार में ही था, मुझे पता ही नहीं था कुछ अध्यात्म भी कुछ होता है करके। तो वो खेलते 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 मैंने किताब पढ़नी चालू की, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अभी वो जो किताब मैं पढ़ने लगा तो मुझे लगा अरे ये तो मेरा ही जीवन है। उसमें मुझे ऐसा लगा कि इसमें जो कुछ हो रहा है ये सब, उसमें उन्होंने पश्चाताप किया कि उन्होंने चोरी की फिर उसका पश्चाताप हुआ, नॉनवेज खाया उसका पश्चाताप हुआ, फिर उसमें जैसे जैसे पढ़ता गया ब्रह्मचर्य का चैप्टर है, चैप्टर वन चैप्टर टू पार्ट वन पार्ट टू, फिर वो पढ़ते 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 एक दो दिन तीन दिन चार दिन दस दिन पांच दिन छह दिन ऐसे करते करते मैं एकदम मौन में चला गया। मतलब वो पढ़ते पढ़ते मुझे, मैं बहुत मस्ती करता था, इससे झगड़ा उससे झगड़ा, तो वो सब जैसे कि एकदम ही आश्चर्य हो गया सबको, ये क्या हो गया इसको, ये शांत कैसे हो गया। एक महीना मौन, दो महीना मौन, तीसरा महीना मौन, तो चार पांच छह महीना तक चिंता हो गई इसकी, कहीं मतलब बोलना तो बंद नहीं हो जाएगा, डॉक्टर के पास लेके जाने की बात चालू हो गई, इसको क्या हो गया, ये क्यों बोलना बंद हो गया। पर वो पढ़ते 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 जैसे एकदम मुझे स्पष्ट हुआ कि जीवन का लक्ष्य ये नहीं है, जीवन का लक्ष्य तो अध्यात्म है, जीवन का लक्ष्य तो भगवान को प्राप्ति है। और इसी बीच एक दूसरी किताब मेरे हाथ में आई, छोटी सी किताब एकदम फटी फूटी, लव ऑफ गॉड, सेंट फ्रांसिस डी सेल्स। उसमें वो जो ऑथर है, जो संत है सेंट फ्रांसिस, उसने अपनी व्यथा सुनाई है कि परमात्मा से वो बिछड़ा हुआ है, उसको कैसा दर्द हो रहा है ईश्वर के, ईश्वरीय प्रेम में तड़प रहा है वो। ऐसी ऐसी बातें उसमें लिखी है कि जैसे वो डिस्क्राइब कर रहा है कि वो दुल्हन है और वो क्राइस्ट दूल्हा है, और वो उसमें वो विरह अग्नि में जल रहा है। तो वो पढ़ते पढ़ते पढ़ते, और फिर उसके बाद में हमारा ट्वेल्थ का रिजल्ट आया, वो रिजल्ट जब तक आया चार महीने के बाद, वो लेट हुआ था किसी कारण से, तब तक मैं पूर्ण उससे डिटैच हो चुका था वो रिजल्ट से। वो रिजल्ट में मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आया कि मतलब सब इतने खुश हो गए, पर फिर भी दुखी थे क्योंकि मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था, मतलब वो जो पेपर में नाम आना चाहिए ना उनको वो चाहिए था ना कि हमारे बेटे का पेपर में नाम आना चाहिए, वो नहीं था। परंतु जो ग्रुप था साइंस ग्रुप और मैथमेटिक्स ग्रुप, मैथमेटिक्स ग्रुप में 97% और पीसी बी ग्रुप जो है बायोलॉजी का ग्रुप उसमें 95%, कहीं पर भी किधर भी एडमिशन मिल रही थी, वो इतने खुश हो रहे, सब खुश हो रहे। तो मेरी अवस्था उस समय वैराग्य की अवस्था थी, वो पढ़ते पढ़ते और वो जो मौन अवस्था थी उसमें, जैसे गीता भी मेरे हाथ में आई फिर वेस्कॉन की, कि उसमें लिखा है कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ये हवा भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, वो भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये सर्वत्र संसार जो कुछ है सब मैं ही मैं हूँ। एकदम नई बातें मुझे पता चली कि ये जो कुछ दिख रहा है सर्वत्र वही है, ये तो कभी सुना ही नहीं था, तो मतलब भगवान बोलता भी है फर्स्ट टाइम। गीता तो बचपन से सुना है पर कभी पढ़ा नहीं देखा नहीं। और फिर ये करते 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 फिर मतलब एडमिशन, उन्होंने कहा डॉक्टर बने तो बनो, हमको मुझे क्या जहाँ बोलोगे उधर जाएंगे। तो वो एडमिशन भी कराई, एडमिशन कराने उसी पीरियड में और दो तीन किताबें हाथ में आई। उसी किताब उसी बीच में पहली बार एक सत्संग चालू था एक जगह गीता प्रवचन चिन्मय मिशन का, वहां जाके चिन्मय मिशन का वो प्रवचन सुना। फिर MBBS में एडमिशन हुई तो वो पूरा MBBS जो था 4.5 साल उसमें मैं कई जगह गया, कई संस्थाओं में गया। ऐसी शायद ही कोई संस्था है कि जहां मैं नहीं गया। अलग 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 हर दिन अलग अलग संस्था, कभी इस्कॉन कभी वो हमारी। मैं हॉस्टल पे गया नहीं पहला साल, तो बहुत जबरदस्त रैगिंग वो सब रहता था, परंतु वो रैगिंग से भी मेरी सब इधर रक्षा हुई। मैं एक ही ऐसा था कि जिसके रैगिंग वगैरह सबसे जो मुक्त रहा। वो फिर मतलब फिर राम कथाएं सुनी बहुत सारी, वो सब मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी। जब भी वो अगर जिस समय वो आ जाता था राम कथा, तो मैं वो सुनने चला जाता था और यहाँ का गया पूरा। फिर और कुछ इस तरह से मतलब ये जैसे जैसे पढ़ता गया। और मुख्य जो प्रभाव जो पड़ा वो मराठी में एक गीत है, मतलब वो गीत जो सुना मैंने एक बार, तो उसका बहुत उसके बहुत पहले से सुन के रखा था, बल सागर भारत हो वो। उसमें एक वाक्य है, जीवन नातरी व्यर्थ मी सिद्ध मराया लाहो, बल सागर भारत हो वो, मी सिद्ध मराया लाहो, ये जीवन नातरी, ये जीवन व्यर्थ है, मुझे सर्वस्व त्याग अर्पीन। जो देश है उसके लिए वो गीत में है कि सर्वस्व मैं उसको अर्पण करूंगा। तो मैं जो आया हूँ छोटे मोटे कार्य के लिए नहीं आया हूँ, महान कार्य करने के लिए आया हूँ वो गीत ने। और दूसरा एक जगह और एक पढ़ा था विवेकानंद का लिखा हुआ, दे अलोन लीव हु लीव फॉर अदर्स रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव, केवल वही जीवित है जो दूसरों के लिए जीते है, बाकी सब मरे जैसे मृत है सब। तो वहां पे जैसे ये भावना जागृत हुई कि मेरा जो जीवन है वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता है, किसी परिवार के लिए नहीं हो सकता, किसी समाज के लिए नहीं हो सकता है। विवेकानंद ने कहा है, माई इंटरेस्ट आर नॉट इंडियन बट इंटरनेशनल, मैं केवल भारत के लिए नहीं हूँ, मैं विश्व के लिए हूँ। तो ये ऐसे ऐसे वाक्यों का जैसे बहुत गहराई पर प्रभाव पड़ा। और फिर वैराग, मतलब वो वैराग पहले से ही था ऐसे मुझे लगता है, परंतु ये सब पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा हो गया, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। और मुझे एक और एक चीज याद है, जब मेडिकल कॉलेज की अभी एडमिशन हो रही थी, अभी डॉक्टर तो बना ही नहीं, अभी जस्ट एडमिशन करने मेरे पिताजी मुझे लेके गए, तो वहाँ एडमिशन प्रोसीजर चालू है कॉलेज में। तो इतना एक एक का राउंड, एक का नंबर आ रहा है, तब तक मैं सोचा चलो बाहर निकलू। बाहर निकल के वो जो हॉस्पिटल था नागपुर में, जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसमें मैं घुस गया। और वो जो वार्ड और वो जो सीन देखा वहां पर, इतने सारे पेशेंट, 100-100 पेशेंट एक ही वार्ड में, कोई नीचे कोई ऊपर, और इतना दुख इतनी पीड़ा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत भयंकर है वो सब जब देखा तो मुझे आंसू आने लगे। मतलब मेरे पिताजी उधर ढूंढ रहे कहाँ चला गया, इसका अभी नंबर आने वाला है, और मुझे पता ही नहीं मतलब। और वो देखते 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 ही मैंने संकल्प किया, मेरा जो जीवन है ये जो है इन्हीं की सेवा में जाए, जिनको कोई नहीं देखता है उनको मैं देखूंगा। द लॉस्ट द लोवलीएस्ट एंड लोवेस्ट, विवेकानंद के वाक्य है, शिव ज्ञाने जीव सेवा, हर एक जीव की ऐसी सेवा करना जैसे वही शिव है। जे जे भेटी जे भूत तेते मानी जे भगवंत, ऐसे मराठी में कहावत है कि जो भी सामने है वो स्वयं भगवान है। यही मतलब अभी डॉक्टर बना नहीं, पर मुझे लगता है कि वही मेरा जन्म हुआ है प्रोफेशन वाइज, कि ये जो लोग है, ये जो दुखी आत्मा है, इन्हीं के मुझे दर्द और पीड़ा दुख दूर करना है। तो वहां जैसे कि ये हुआ, फिर वो ढूंढते ढूंढते मेरे पिताजी और लेके गए चलो। तो और वो जो 4 साल थे मैं ढूंढ रहा था भगवान को, कहाँ है वो, कहाँ है। यहाँ तक कि मुझे याद है कि मेरा जो सेकंड MBBS की जो पढ़ाई है वो भी मैंने वो जो श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर था उसी में की बहुत सारी पढ़ाई, तो माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई उसी ज्ञान मंदिर में बैठ कर की। मुझे बहुत अच्छा लगता था वो मंदिर में, वहां पर एक शिव मंदिर भी था कि वहां पे जैसे ही वो गीत बज रहा था हर हर भोले नमः शिवा, वो जैसे कि पूरा आश्चर्य की अवस्था जैसे हो जाता था। और ये सब जब चालू था तो उस समय मेरी लौकिक बहन फिर ज्ञान में आई थी, बिना कुछ भक्ति किए और बिना कुछ पढ़े सीधा ही ज्ञान में। और फिर मैं आके उसको बहुत कन्विंसिंग अच्छे से उसको समझाता था कि कैसे भक्ति की जाती है, वो कहती है पारा था तो पा लिया, पारा था तो पा लिया। अरे कैसे पाया? मुझे लगता था ये ऐसी इसकी भ्रांत भ्रमित हो गई है। मुझे याद है मैं उसको जबरदस्ती लेके गया, इस्कॉन की भागवत कथा थी, 9 दिन उसको रोज लेके गया वहां पर, सुबह का सत्र शाम का सत्र,
और वो ज्ञान में।
हाँ वो ज्ञान में, वो इधर उधर देखते रहते थी और फिर आते समय कहती थी 1 मिनट सेंटर पे चलो। सेंटर में मुझे ऐसा लगता था इसका इतना मतलब क्या है, इतना ज्ञान देने के बाद भी शायद इसके भाग्य में ही नहीं है भक्ति का क्यों इसकी भक्ति का उदय क्यों नहीं हो रहा है, इतना इतना कितना गोपिया भाव विभोर हो रही है, कैसे भजन चल रही है, हे गोपाल हे गोविंद, ऐसे इसके अंदर कुछ जागृति नहीं है, कितना नीरस जीवन है। तो मतलब ऐसे ही लगता था कि वो हम आते थे तो आते थे कहती है जस्ट रुको मैं आती हूँ 10 मिनट में मुरली पढ़कर, वो भी चुपके से क्योंकि घर में बहुत विरोध था, उसको भी विरोध था, तो वो जाती थी, मैं बाहर बैठा रहता था, मैं अंदर नहीं जाता था, एक ही बार गया था बस, वो भी निकल के आ गया फिर वो मुरली चालू थी वहां पर, पहली बार एक ही बार जाकर बैठा और वो बहन जी ने कहा भक्ति है रात ज्ञान है दिन, इतना सुना और निकल के बाहर आया। ये क्या है, ऐसा थोड़ी ना होता है, अपना मतलब आप जिस पथ पर हो बस वही एक मार्ग भगवान को पाने का, एवरी वे लीड्स टू द गॉड। विवेकानंद ने कहा है हाँ सारे ही मार्ग भगवान की तरफ जाते हैं, ये तो कहना मतलब कट्टरपंथी है, ये ऐसा थोड़ी होता है। फिर मैंने उसको बहुत मतलब कन्विंस किया, मतलब उसके लिए प्रार्थनाएं भी की बहुत सारी,
ज्ञान जोड़ दो
ज्ञान, हे प्रभु उसका कल्याण करो, उसको भक्ति दो। और वो कुछ और कहती थी, वो कहती थी कि शिव बाबा इसकी बुद्धि का ताला खोल,
अंदर अंदर
वो कहते थे ना कि शिव बाबा इसकी बुद्धि का ताला खोलो, तुम्हारी बुद्धि में भूसा है, ऐसे सब कहते थे। और उसको मैं नई नई किताबें ला के देता था अच्छी अच्छी, जिसमें मतलब और जिससे भक्ति बढ़े, तो इसका तो भक्ति का तो कोई नाम ही नहीं, क्या करे। मुझे बड़ा बहुत अंदर एक दुख होता है, तरस भी आता था, दुख भी होता था।
संकल्प ने तो काम किया ना, ताला खुला
उसने। और ये सब जब चालू था, मुझे याद है कि ये अभी अनुभव तो टाइम हो रहा है, पर बहुत ये जो ढूंढ रहा था मैं भगवान को, पर मेरी जो इच्छा थी ढूंढने की वो बहुत ज्यादा तीव्र थी, बहुत मतलब बहुत अति तीव्र, जिसका इच्छा जिसको कहते हैं कि वो कौन है, उसको क्या पाऊं। मुझे याद है जब रामनवमी थी, वो राम का रथ खींचते खींचते कितना दूर हम लेके गए थे, मैं मतलब वो जो रथ को लेके जाते हैं ना, वो लेते 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 पता नहीं कहाँ तक चले गए थे, और रात हो गई थी, मुझे रहने को जगह नहीं थी, पैसे भी नहीं थे, मैं वो गार्डन में सो गया था, वो जो मंदिर के बाजू में जो बगीचा था वहीं सो गया।
कहाँ खींचता, कहाँ खींचता?
नागपुर,
नागपुर।
मतलब वो जो रथ था ना, रामनवमी में रथ लेके जाते हैं ना, वो रामनवमी, इतने सारे मंदिर, फिर कितने सारे प्रवचन, गीता प्रवचन, अनगिनत रामायण और अनगिनत भागवत कथाएं सुनी बैठकर, वो भी सादा सुनना नहीं, मतलब निर्जल, कुछ ना खाना उस समय, और नीचे सोना जमीन पर, ऐसा नहीं कि केवल सुनना है, वो क्या सुना रहे। पर उसके बाद में फिर द्वंद चालू हुआ मन में कि उस कथा में तो ये कहानी बताई थी, इस कथा में कुछ और, अभी वास्तविक क्या है। फिर वो गीता, हाँ फिर वो समझ, फिर वो एक्चुअली मैंने सोचा मैं खुद ढूंढूंगा, पहले तो खाली सुनना रहता था, फिर बाद में किताबें पढ़नी चालू की, वो गीता प्रेस की भागवत गीता प्रेस की किताबें ली और उसमें भी एग्जैक्ट क्या क्या है, फिर पता चला कि ये लोग अपने मन से बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, इसमें तो वो है ही नहीं मतलब बहुत सारी कहानियां चुटकुले जो भी सुनाते हैं उस कथाओं में, फिर उसमें से पढ़ा बहुत सारा। तो ये मतलब, पर ये सब जब चालू था, एक तरफ वो मेडिकल की भी पढ़ाई बहुत ज्यादा थी और ये इधर ये मतलब ऐसा द्वंद भयंकर चालू था, एक तरफ मेडिसिन और एक तरफ ये भगवान, अभी क्या करे, इधर जाऊं या इधर जाऊं। फिर ये जब पूरी MBBS पूरा हुआ, उसके बाद में सेकंड, ये जो पहला टर्निंग पॉइंट जिसमें 6 महीना मौन, अभी MBBS जिस दिन खत्म हुआ सारे लड़के अपने अपने घर चले गए हॉस्टल से, छुट्टियां होती है, मैं नहीं गया, मैंने कहा मैं इधर ही रुकूंगा, क्योंकि देखा कि अलकाश्री जी है, उनका 7 दिन का रामायण पर प्रवचन, तो वहां मेरी एक सेकंड जागृति आई कि मुझे लगा कि भगवान को पाना ही एकमात्र लक्ष्य है जीवन का। अभी तक था कि पाना है प्राप्ति करनी है, पर वहां वो सुनने के बाद लगा कि यही एकमात्र मार्ग है। और उसके बाद में फिर इंटर्नशिप चालू हुई 1 साल तक, और वो इंटर्नशिप में भी ऐसा पागलपन की अवस्था थी कि मतलब बस ये जो पेशेंट है, ये पेशेंट है ही नहीं, ये भगवान ही है, ये वही है जो मंदिरों में जिसकी पूजा और वो लोग कर रहे हैं वो ये है। मतलब वो मतलब बहुत ज्यादा भावुक जिसको कहते हैं ना, वो अभी अभी नहीं है वैसा, अभी कम हो गया ज्ञान में आने के बाद वो सब मतलब भावुकता होती है ना कि ये वही है। मतलब वो पेशेंट के ड्रेसिंग करते करते आंसू आ जाना, मैंने एक मैडम हमारे थे मराठे के, उनको कहा था कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, उसने कहा था ये अष्ट सात्विक भाव उत्पन्न हो रहे तो मतलब इस तरह से होता है, मुझे क्या करूं इसका। तो और दिन रात लगा हुआ रहता था, दिन रात मतलब कोई टाइम ही नहीं उसका, और कोई मतलब जो वो लोग कहते थे, हाँ लोग कहते थे ये बहुत सिंसियर है, पर वो सिंसियरिटी नहीं थी मेरी, मेरा कुछ और था, वो उनको पता ही नहीं था, उनको लग रहा था ये बहुत सिंसियर है, अच्छे से काम करता है, जब भी जाते हो रात आधी रात को भी आए तो ये वहां ही कैजुअलिटी में तब भी है, अभी भी है, अभी भी है। मैं तुम सोते को मुझे वो सोना भी ना सब भूल गया था, क्योंकि जब ये इतना दुख है, इतने वो तड़प रहे, इतना पीड़ा में है कोई, मैं कैसे सो सकता हूँ, चाहे मेरी ड्यूटी हो ना हो, दिन रात एक साल पूरा उसमें गया। उसके बाद एक्चुअली फिर वापस मुझे पता चला अब क्या करूं, इंटर्नशिप तो हो गया, लोगों ने कहा कि तुम ना बहुत अच्छे बड़े जॉब पोस्ट पर जा सकते हो, मुझे बोला मुझे नहीं जाना है, यही ठीक है, मैं केवल ऐसी सेवा करनी है, अभी जैसा कर रहा हूँ ना यही करना है मुझे। और फिर मैं भाई के पास गया, भाई के पास फिर मैं पढ़ाई करने पोस्ट ग्रेजुएशन की, सबने पीछे लग गए ना, एमडी करो एमडी करो पागल जैसे, मुझे तो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है कुछ, फिर भी वो करा जबरदस्ती। तो उसमें भी मेरे भाई, वो भी एमबीबीएस कर रहा था, सेकेंड ईयर में था, तो वहां रहते रहते भी मतलब वापस मेरा भटकना चालू हुआ, फिर रामकृष्ण मिशन, चिन्मय मिशन, गीता प्रेस, और फिर चर्च में भी गया 3 मास के लिए एवरीडे, वो सब छोड़ दिया फिर इधर का, केवल चर्च में खाली क्राइस्ट और क्राइस्ट की भक्ति, और वो जितना वो उधर के जो पादरी थे उन्होंने भी कुछ मुझे कहा, बहुत समझाने की कोशिश की, देखो तुम्हारे राम ने रावण को मारा, तुम्हारे कंस ने, कृष्ण ने कंस, हमारे क्राइस्ट ने किसको मारा, तो इस तरह की बहुत सारी मुझे काउंसिलिंग किया, इसमें आ जाओ इसमें आ जाओ इसमें आ जाओ। तो वो भी एक तरह से वो कभी वो तो फिर कभी बौद्ध धर्म, कभी फिर सिख धर्म, फिर अलग अलग किताबें, नागपुर में वो बर्डी में इतनी सारी किताबें मिलती है, वो पढ़ते पढ़ते फिर मुझे चश्मा लगा तब क्योंकि मुझे ढूंढना था, वो पंडित बनना लक्ष्य नहीं था, ढूंढना था क्या है कौन है वो। और वो करते करते जैसे वो रामकृष्ण मिशन वहां पर था मठ, और वहां फिर जैसे मैं जाने लगा, और वहां का जो संगीत और वो जो वातावरण और जो अगरबत्ती की सुगंध और वो खंडन भव बंधन, वो जैसे भजन चालू होता था, बहुत ज्यादा वैराग आने लगा, फिर इतना वैराग, फिर एक ऐसी अवस्था, ये थर्ड टर्निंग पॉइंट जीवन का जिसमें वापस मौन में चला गया, और फिर एकदम जागृति हुई कि जीवन का लक्ष्य तो केवल यही है भगवान, ये सब तो है ही नहीं। तो मैंने फिर वहां डिसाइड किया कि मुझे संन्यास लेना है, ये मेडिकल फील्ड मुझे करना ही नहीं है। पहले सोच रहा था जैसे 2 मार्ग दिख रहे थे, एक तरफ पेशेंट पोस्ट ग्रेजुएशन करो और पेशेंट की सेवा करो और फिर सब कुछ करो, एक तो ये मार्ग, दूसरा मार्ग संन्यास लो और भगवत प्राप्ति करो और विश्व का कल्याण करो, ऐसा। वो विश्व का कल्याण क्या करना है वो पता नहीं, परंतु प्राप्ति करनी है। तो ये 2 ऐसे भिन्न मार्ग, कितना दिन तक ये संघर्ष चला, इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं, इधर जाता हूं तो ये खींचता है, उधर जाता हूं तो ये खींचता है। फाइनल डिसीजन लिया कि ये मैं मेडिकल प्रोफेशन नहीं कंटिन्यू कर सकता, मुझे इधर ही जाना है, यही मार्ग है, ये मार्ग तो है ही नहीं, मार्ग केवल एक संन्यास का ही मार्ग है। और फिर तो बहुत हंगामा हुआ भयंकर, जैसे घर पे बताया, भाई को बताया और घर पे बताया, और बहुत मतलब बहुत ही भयंकर हंगामा, हाँ पूरा कोहराम, कितने लोग आए, जो भी आते थे समझाने के लिए मुझे। मैं सोच रहा था कि संसार से ऐसे निकल जाओ, जैसे मैंने एक प्रवचन में सुना था, जैसे सांप अपने बिल से निकल जाता है चुपचाप, जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है, वैसे इस संसार से चुपचाप निकल जाओ। पर यहाँ हमारे पिताजी और माताजी ने तो जितने रिलेटिव है उन सबको बता दिया कि हमारा बेटा जा रहा है ये संन्यास ले रहा है। अरे जिसको बताना नहीं चाहता, तो कोई भी आता था मुझे समझाने, ऐसे ही कहीं घूम लेके जाते थे, और फिर बात वहीं पर आती थी, तुझे आए तुझे पासी, यहीं पे कर सब कुछ, ये कुछ करना है तुमको, इधर तुमको कुछ बना के देंगे, ऐसा कर देंगे वहां से कर देंगे। और उसी बीच फिर हमारे मेरी रिजल्ट आया इसका, एमबीबीएस का, तो उसमें भी आई वॉज अगेन द टॉपर एवरीवेयर, तो फिर तो और मोह बढ़ गया इसको कैसे छोड़े, यहां तक आया वो हाथ से आने लगा घास, यहां तक आया और कोई छीन ले, ऐसा हो सकता है तो वो मतलब बहुत, पर तीन तीन कुंडलियां, फिर वो एक सत्यनारायण की पूजा की, फिर वो गणपति को पानी में रखा कई महीने तक और भी बहुत कुछ किया पर वो जितना विरोध उतना वैराग, उतना वैराग। हमारी माता जी ने कहा था कि मैं अभी इस कुएं में कूद जाऊंगी, मैंने बोला जाओ कूद जाओ
गणपति क्यों डोवा गणपति,
अरे संकट आता है तो गणपति पानी में रखा जाता है, पता है वो बहुत संकट हो गया ना।
अच्छा, आपको बचाने के लिए सन्यासी न बने?
हाँ, वो रोकने के लिए कई तरह कितनी बड़ी बड़ी कुंडलियां निकाली थी कि जिसमें लिखा था कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है ऐसा, वो एक तो मतलब उसमें भी मेरा दूसरा फर्क, बहुत सारी बातें और इतनी तो पता हूँ, मतलब संन्यास कहाँ लू, इतनी सारी मैंने एक लिस्ट निकाली थी 50 संस्थाएं लगभग, इसमें से कहाँ जाऊँ, उसमें से एक ब्रह्मा कुमारी भी नाम था, परंतु जब देखा ब्रह्मा कुमारी वसंत नगर नागपुर सेंटर, वहां पर भी बिगड़ गया, क्योंकि अब इतना सारा मैंने विवेकानंद पढ़ा, फिर विवेकानंद के 8 वॉल्यूम्स है, वो भी वो पढ़े भी ऐसे कि उसकी भी भयंकर कहानी है कि वो जो रामकृष्ण मठ था, फिर वहां की एक 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 किताबें लेता गया, फिर इतना वो लगा कि बस यही जीवन है और जिसमें जीवन ही नहीं है। मुझे याद है एक रात, रात को 9 बजे या 10 बजे इतनी तेज बारिश हो रही थी, उस तेज बारिश में मैं भीगते भीगते गया ऑटो में, और फिर वो ऑटो से वहां और वहां से वापस पैदल, और वो भीगते भीगते वो पूरी किताबें लेके आया, इतना नशा था कि मुझे पढ़ना ही है, वो चाहिए क्या है, विवेकानंद का कंप्लीट साहित्य जो है 8 वॉल्यूम्स थे पूरा, वो पूरा मतलब इतना वो नशा और लगन कि ये क्या है, क्योंकि जीवन कहानी पढ़ ली, अभी उसने क्या बोला वो मुझे जानना है, तो वो पूरा रात में भीगते भीगते सारा लेके आया था उधर, और वो बहुत कम समय में सारा कुछ, हाँ क्योंकि मौन की अवस्था थी ना, तो मौन की अवस्था में पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्या क्या होने वाला है वो पता चलता है हमको कि ऐसे ऐसे होने वाला है, ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है, तो ये मतलब बहुत ज्यादा तीव्र वैराग जिसको कहते हैं ना, और ये पढ़ने के बाद में तो बहुत वैराग, कुछ भी नहीं चाहिए इधर का, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है संसार का, एक भी चीज नहीं चाहिए ना, तो MBBS तो एकदम ही फालतू सब लग रहा है, डॉक्टर प्रोफेसर तो बिल्कुल ही मतलब ये तो करना ही नहीं है, बीच तो ये देह तो देह और देह की बीमारी से क्या करना है, हमें तो विश्व कल्याण करना है, ये इसका कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। तो हमारे पिताजी ने बहुत प्रयत्न किया, पर मुझे ऐसे 6 लेटर आए एक सन्यासी के, जो पहले डॉक्टर था फिर सन्यासी बना और अभी फ्रस्ट्रेटेड है, और वो कह रहा है मुझे अज्ञात अज्ञात कोई नाम नहीं था उसने, 6-6 पेज का एक एक लेटर कि दादा मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ कि तुम, मैंने जो गलती की वो तुम नहीं करो, ऐसे सब, वो किसने लिखे अभी पता नहीं, कहाँ से आए कैसे लिखे, ऐसे बहुत सारे प्रयत्न किए, मतलब इस तरह से और भी मतलब उसमें फिर वो लोन की बात, तुम्हारे नाम पर लोन लिया गया पहले वो दो, फिर उसके बाद में संन्यास देना, हमारे पिताजी ने नई बात निकाली फिर लोन वोन देगा, तुम सन्यासी बन जाओगे और लोन ये पहले बताना चाहिए था फिर MBBS करने से पहले कि तुम सन्यासी बनने वाले हो तो लोन मारो, तो वही बात निकाली, क्योंकि मैं मेरे पिताजी को जबरदस्ती लेके गया फिर रामकृष्ण मठ में, तो वहां पर उन्होंने खाना नहीं खाया, उन्होंने कहा ये लोग जादू करते हैं वगैरह वगैरह, हमारे पिताजी ने तो लेटर लिखा टू प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, माय सन हैज बीन हिप्नोटाइज्ड बाय रामकृष्ण मिशन, 4-5 पेज का बड़ा लेटर लिखा पूरा, क्योंकि सारे प्रयत्न जब विफल हो रहे हैं तो कुछ तो करेंगे, ब्रह्मास्त्र मतलब एक लेटर लिखा कि भाई ये जो इंस्टीट्यूशन है ये बहुत खराब है, इसका कुछ करो, क्योंकि ये हमारे अच्छे, हमारा इतना होशियार लड़का है वो उसको बिगाड़ रहे, हिप्नोटाइज सम्मोहित कर रखा है, तो और मेरी जो इतनी किताबें थी इतनी सारी, सारी हमारे पिताजी ने छुपा दी, कहाँ अभी तक पता नहीं मुझे कहाँ किसके घर रखी है, सही नहीं वो मेरी किताबें जो थी मेरे अंडरलाइन थे नहीं गायब हो गई पूरी, वो छुपा के रख दी पूरी, जबरदस्ती मैं पिताजी को लेके गया, भाई ऐसा नहीं है, कितनी बार उनको समझाया, पर वो क्या पहले हाँ हाँ करते फिर वापस मोह, मोह तो ऐसा है छोड़ता थोड़ी है किसी, तो फिर उन्होंने कहा नागपुर में मैं लेके गया उनको रामकृष्ण मठ नागपुर में खार में, तो वहां पे एक साधु के सामने उन्होंने कहा, वो स्वामी एक थे, कि इसके नाम पर लोन है वो कौन देगा, आपकी संस्था देगी क्या, फिर वो साधु ने मुझे कहा कि शांत, इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है संन्यास के लिए, अगर तुम्हारा वैराग्य सत्य है रियल है तो वो जाएगा नहीं, इसके लिए थोड़ा शांत हो जाए। फिर मैंने माना कि ठीक है, तो मेरे पिताजी ने तुरंत वहां से मेडिकल ऑफिसर एक जॉब की ऑर्डर निकाली, वही ऑफिस है, और 6 महीने मैंने एक जॉब किया। वो जो 6 महीने जॉब किया उसमें हर महीना जितना पैसे आता था 12,000, उसमें से 10,000 हर बैंक में डालता गया डालता गया डालता गया, और लोन खत्म, फिर वापस वैराग के लिए तैयार। उसी बीच मेरी मंत्र दीक्षा हुई, मैं कॉमन बुगी में बैठकर कितना 50 घंटा लगा था मुझे वो बेलूर मठ पहुंचने के लिए, स्वामी रंगनाथन के द्वारा मेरी मंत्र दीक्षा हुई वहां पर। स्वामी रंगनाथन उस समय 94 साल के थे, वो विवेकानंद के डायरेक्ट शिष्य रंगनाथन प्रेसिडेंट ऑफ द रामकृष्ण मिशन उस समय 2002 में, हाँ वो जो डायरेक्ट उनसे, तो उनके द्वारा डायरेक्ट हाथ रख के मंत्र दीक्षा हुई मेरी। वो भी छुपके से गया और छुपके से आया, क्योंकि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो वहां पर भी फिर मतलब वो जो हॉस्पिटल में मैं काम किया वहां पर भी मतलब इतने पेशेंट, और मैं बहुत ऐसे ऐसे फेमस टाइप हो गया उधर, क्योंकि वही संस्कार वापस जागृत हुआ कि सबकी सेवा करनी है। तो वो लोग बोले नए डॉक्टर को दिखाना है। फिर मुझे लगा ये भी एक माया है, कीर्ति जो है ना, प्रशंसा और कीर्ति, ये तो मेरे मार्ग में आ रही है। तुरंत मैंने जिस दिन मुझे जागृति आई मैंने वापस रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। तो मेरे पिताजी ने वापस जाके वो रेजिग्नेशन, ये ऑफिस में जाके वो ऑफिस में जाके सबको बता दिया कि ये संन्यास ले रहा है मेडिकल फील्ड के साथ में धोखा, इसका रेजिग्नेशन लेटर नहीं लेना। और वो जो हॉस्पिटल में मैं था वहां जो भी मिलता था वो ऐसे ही कहता था कि डॉक्टर इधर ही रुक जाओ ना, नहीं जाओ ना। अरे मैं बोले इनको किसने बताया, मैं चाहता था चुपचाप जाओ, और जो मिलता था गांव में जो मिलता था वो यही चीज, मत जाओ ना इधर ही रुक जाओ ना, ये कितना अच्छा है, तुम ना विदेश जाओ, तुम सर्जन बनो, ऐसे करो वैसे करो, ये भी तो समाज सेवा है, इसमें तो सब कुछ है। ये मतलब ऐसे ये था, जो मैं नहीं चाहता था वो सब होता था। वो हमारे पिताजी ने टीवी ला के रख दिया हमारे घर में, मेरे जहां मैं फ्लैट था, मतलब बुद्धि इधर घुसाने के लिए। पर वो सबसे
वेद का वैराग्य,
वैराग बिल्कुल, वो जितना करते थे उतना और वैराग। और फिर मैं सोचू कहां जाऊं अभी रामकृष्ण मिशन में, अब तो जाना ही है, फाइनल हो गया मेरा, रेजिग्नेशन कर दिया, सब हो गया, लोन चुकता हो गया, मैं वापस तैयार हो गया जाने के लिए कि मुझे जाना ही, अभी कोई नहीं रोक सकता। अगर रोकने की कोशिश की तो देखना। मेरे मुझे याद है मुझे कभी क्रोध नहीं आया, पर ये एक ही बात था जीवन में जब मुझे क्रोध आया, बहुत ज्यादा क्रोध, ऐसा कि मैंने वो जो लोहे का रहता है ना हाथ में ले लिया था एक बार, अगर मेरे मार्ग में कोई आया तो मार दूंगा उसको। क्योंकि ये लोग रोज नए नए लोग लाते थे। एक बार तो एक सन्यासी को लाया जो कि रामकृष्ण मिशन में था पहले, और अभी छोड़ दिया और उसके विरोध में प्रचार कर रहा है, उसको पता नहीं कहाँ से ढूंढा इन्होंने और उसको लेके आया, और वो मुझे समझाने लगा हाँ जैसे शंकर उसके विरोध में, तो वो आके पूरा मुझे समझाने लगा। तो कितने मतलब बाप रे बाप भयंकर, मतलब वो कितना ऐसा गया। और फिर जब ये फाइनल हो गया मैंने सोचा, फिर एक बार तो मैं साउथ में भी गया, वो नेट्रम पर किसी ने कहा वहां जाके संन्यास लो, कौन से अभी रामकृष्ण मिशन के इतने सारे सेंटर है उसमें जाना कहाँ है, हेडक्वार्टर में जाऊँ, किसने कहा हेडक्वार्टर नहीं जाओ, पूना गया, पूना वाले ने एक लेटर दिया उधर जाओ, उधर गया, उधर से कहा साउथ में जाओ, साउथ में गया, वो वापस कॉमन बुगी में बैठ के 20 घंटा 50 घंटा वहां जाना, वो ढूंढना, वो एक गांव मिला वेल्लोर के उधर, वहां 4 दिन रहा, 4 दिन में वहां और एक साधु मिला, साधु ने कहा तुम यहां संन्यास नहीं ले लो चेन्नई में संन्यास लो, फिर वो वहां चेन्नई गया, फिर चेन्नई में 7 दिन रहा, फिर वहां पे वापस मेरे पिताजी का फोन आया, ये जो तुमने जॉब किया ना 6 महीना वो गवर्नमेंट जॉब था, अगर वो 6 महीना नहीं 2 साल करना पड़ेगा, नहीं तो 1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट को भरो। तो वो बहुत सारी एक एक करके नई नई बातें, वो स्वामी गौतम आनंद जो हेड थे पूरे तमिलनाडु के, उनसे बात किया, इससे बात किया, उससे बात किया, वहां पर भी उन्होंने भी अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं दी, भोजन दिया उसमें नमक ही नहीं, कभी कुछ नहीं देखने के लिए। उनको जो बताया कि मैं सब कुछ छोड़ के आया, मतलब देखने के लिए कि कितना इसका पक्का है, और मुझे लगता मैं उनकी परीक्षाओं में पास था। तो मतलब लेने ही वाले थे मुझे, परंतु फिर वो जो फोन आया ना पिताजी का पैसे भरो, तो वापस मैं आया, फिर वापस मेरे एक मित्र को ढूंढा जो कि वकील था, ढूंढने के लिए क्या है ये पैसे का क्या करना है, मतलब वैराग 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 वैराग, इतना वैराग कि, और एक तरफ वैराग और दूसरी तरफ परमात्मा प्रेम, उसको मिलन की जो जो तड़प थी वो और ज्यादा डीप थी, वो तो कोई पहचान नहीं पा रहा था उसको, पर वो बहुत ज्यादा डीप थी। और ये सब जब मेरी बहन मुझे एक माता के पास लेके गई जो ज्ञान में थी, जिसका खुद का गीता पाठशाला है, उसने कहा कि एक हाँ, क्योंकि मेरी बहन कहती थी अरे तुम्हारा ये जो वैराग, हमारे सेंटर में भी ऐसा किसी का वैराग नहीं है, ये जो वैराग है तुम्हारा हमारे सेंटर में भी किसी का नहीं है, ये तो बहुत भयंकर वैराग है तुम्हारा पर कहती थी तुम्हारा तमो प्रधान वैराग एक वाक्य तो जरूर बोलती थी, वैराग्य तो बहुत अच्छा है पर तमो प्रधान ज्ञान की भाषा
क्योंकि ऐसा देखा नहीं ना
ये तमो प्रधान। तो एक माता के पास लेके गई, माता को पहले ही बता दिया कि मेरा भाई है वो छोड़ के जा रहा है, तो माता ने फिर मुझे ऐसी दृष्टि दी पावरफुल मैंने भी उसको बहुत पावरफुल दृष्टि दी मेरा मैंने सोचा कि मैं भी ब्रह्म और ये भी ब्रह्म, सर्व खलविदन ब्रह्म, और उसको बहुत पावरफुल दृष्टि दी, उसने मुझे दी, उसको दी, उसने मुझे ऐसे 15 मिनट तक दृष्टि दी, उसने मेरे लिए योग भी किया 10-15 दिन कि मैं रुक जाऊं। मैंने कहा जो करना है करो, मैं रुकने वाला नहीं हूं, मुझे अपना ये की याद है जब भगवान स्वयं अगर मुझे रोकेगा तो ही मैं रुकूंगा, नहीं तो इस संसार में कोई शक्ति नहीं है कि जो मुझे रोक सके। अहंकार भी आ गया था एक तरह से, मतलब वो जिद जो ईश्वरीय तड़प थी वो, क्योंकि विरोध जितना हो रहा था वो और ज्यादा अहंकार में परिवर्तित हो रहा था, वो जिद में परिवर्तित हो रहा था। फिर अभी तो लेना ही है, वो यहां तक कि मेरे मेडिकल के सारे सर्टिफिकेट में जलाने के लिए निकल गया था, कहाँ है वो सारे, ताकि वापस आने का कोई मार्ग नहीं रहे। तो हमारे पिताजी ने फटाफट उसको भी छिपा दिया, कहीं और किसी रिश्तेदार के यहाँ लेके गए उसको, ताकि ये जला ना दे, जल गए तो बस, नहीं तो ओरिजिनल जला दिया तो कहाँ से कुछ होगा। भयंकर वैराग्य, भयंकर। और फिर पर हम मेरी बहन ने कहा अभी जाना तो फाइनल ही है, पर एक बार मधुबन से जाते जाते जाओ, मधुबन से जाते जाते, बाबा 30 तारीख को आने वाले थे, ये 26 तारीख की बात है। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारा कोई नियम फॉलो नहीं करता, तो उसने कहा तुमको कोई जरूरत ही नहीं है मैंने कहा मैं बाहर का भी खाते, तो बोलते तुम कुछ भी करो चलो। पर उसने कहा कि हम, वो मुझे सेंटर पर लेके गई, नागपुर सेंटर, पुष्पा रानी दीदी के पास, और उसने कहा कि वहां अगर तुमसे पूछे कि ज्ञान में चलते हो तो हाँ कहना। मैंने कहा मैं नहीं कहूंगा क्योंकि सत्य अंदर सत्य है, तुम्हारे जैसे झूठ नहीं बोल सकता हूँ। बाहर खाने को बोलता तो पेट दर्द होता है, तो कुछ होता है उसको, अलग अलग दिन अलग अलग होते रहता है, बाहर का खाती नहीं है, झूठ का आधार लेती है, ये कोई धर्म है तो फिर वो लेके गई, तो बहन जी ने पूछा सेंटर में कौन से जाते हो, ज्ञान में हो? मैंने कहा हाँ उसने कहा कौन सा सेंटर, सेंटर कौन सा बताओ। मैंने कहा वो अमरावती सेंटर, वहां फोन लगाया, ये आता है क्या? बोले वो तो नहीं आया, उसकी बहन आती है। तो मैंने कहा वहां नहीं, मैं जो मेडिकल ऑफिसर था ना वहां जाता था, वहां फोन नहीं है वो ऐसे देखने लगे मेरे तरफ से और तो बोले तुम कैसे आओगे, हमारा तो पूरा रिजर्वेशन हो गया, सब हो गया। तो मैंने कहा मैं अंदर ही अंदर बोल रहा था, मैं सारे भारत में घुमाऊ कॉमन बोगी में बैठ के, मुझे रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, तो नीचे बैठ के सोया हूँ, ज्यादा ट्रैवल मैंने जो किया है वो तो क्या न्यूज़पेपर डाल के वहीं बैठ के किया है, मुझे ये रिजर्वेशन की तो जरूरत ही नहीं है। तो उसने कहा ठीक है चलो भाई, तू आ रहे तो बाबा से मिलने हैं तो ठीक है। और मैं आ गया फिर ट्रेन में बैठकर, सोचते सोचते कि अभी भागवत का मेरा 7वां अध्याय चालू है, 8वां बाकी है, ज्ञानेश्वरी का 4वां अध्याय पूरा हुआ, अभी 5वां चालू करना है, अभी ब्रह्मसूत्र थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा और पढ़ना बाकी है, अभी वो जो है वो शंकराचार्य का भाष्य अभी पूरा समझ में नहीं आया, पर रामानुजाचार्य के भाष्य के साथ उसका क्या है, ये सब सोचते सोचते इधर अकेले कॉमन दुगी में बैठा हुआ वो नहीं आई, वो चिट्ठी भी नहीं था, वो बहन थी बस, वो बहन को पहचान करा दिए मेरा भाई है बस। हाँ बस वो टीचर बहन कहाँ है मुझे बाद में मिली नहीं, वो टीचर बहन और वो सारी पार्टी उधर रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में, मैं इधर अपना कॉमन बोगी में बैठा हुआ और चल पड़ा सोचते सोचते। और मैंने ये भी सोचा था कि यहाँ से जैसे माउंट आबू पहुंचूंगा उससे सबसे पहले यहाँ से निकल के सबसे पहले कुट्टा पर थी, क्योंकि सत्य साई बाबा एक व्यक्ति है कि जिसको अभी मेरे मिलना बाकी है, वो एक बार हो गया कि उसके बाद में सीधा चेन्नई और संन्यास। चेन्नई को जब मैं गया तो अपने बैग भी छोड़ के आया, मैं उनको बता के मैं आऊंगा, अभी भी बैग उधर ही होगी, अभी तक लेने गया नहीं मैं, लाने का प्रोग्राम है वो, मैंने सोचा कि बैग मैं इधर ही छोड़ के जा रहा हूँ, मैं आऊंगा। और फिर मैं ऐसे आ गया इधर शांतिवन, वो मुझे ढूंढने लगे कहाँ है वो, एक था उनको इतना पता था कि एक है कोई उसमें हमारे ग्रुप का, हाँ जनरल में वो सब उधर रिजर्वेशन में।
वो बहन जी आपकी दीदी
वो नहीं आई, वो उस समय वो नहीं आई।
छोटी है,
एक साल बड़ी।
अच्छा,
तो वो मैं बैठा और जैसे शांतिवन में आया वो ग्रुप के साथ, पहले अहमदाबाद, अहमदाबाद से दूसरा ट्रेन चेंज हो इधर, और मैं तो सोच ही रहा था कि कैसे यहाँ से उधर जाऊं और वहां से, मतलब कैसे अभी यहाँ से सीधा जाना है ना मुझे, यहाँ चार दिन रुकना है और इधर से उधर जाना है, मतलब मैं सोच ही रहा हूँ और देखा इधर शांतिवन में, पर आते ही गेट नंबर 2 ये जगह मैंने देखी है, ये अनुभव होगा कि ये जगह मेरी देखी है, परंतु अंदर से फिर वापस द्वंद्व कि नहीं ये तो सम्मोहन, मतलब यहाँ में इनके माया है, ये तो हमारे मार्ग में माया है, ये मैं इसके बहकावे में आने वाला नहीं हूँ, ये माया ही है, यहाँ मैं रुकने वाला नहीं हूँ। वो रात में सोया, रात में फिर सोया तो वो लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखा, फिर सुबह उठा वापस तो फिर वो हनुमान चालीसा, राम रक्षा, वो याद ही नहीं आ रहा है, और मेरी मंत्र दीक्षा हो गई, मंत्र भी याद नहीं आ रहा है, मतलब ये हो क्या रहा है, इधर ऐसे क्यों हो रहा है, कहाँ हो गया, ये कुछ तो है इधर, पर मैं कोई छोड़ने वाला थोड़ी हूँ, इतना ना तो राम रक्षा याद रही ना हनुमान चालीसा, मैं फिर भी प्रयत्न करूँ। और शाम में फिर वो जैसे गीत बजा शिव की याद, मुझे लगा ये गीत तो मैंने सुना है, कभी नहीं सुना था, पर मुझे लगा ये गीत हजारों बार सुना है, कहाँ सुना है वो याद ही नहीं आ रहा है, पर सुना है। और फिर बाबा के दिन तो मतलब 3 बजे से वहां जाके बैठ गया, वो अनाउंसमेंट होती है ना 3 बजे, और फिर वहां पे 2 दिन में किसी से बात ही नहीं किया, तो हमारी बहन जी को लगा, तो ग्रुप बिठाया एक बार कि तुम बात नहीं करते, उसको लगा शायद वो अनाउंसमेंट हुआ है ना, 2 दिन मौन रहता है बाबा के आने से, शायद इसका ये मौन होगा, मेरा कुछ और मौन था मैं कुछ और सोच रहा था, उनको कुछ और लग रहा था, मतलब वहां मैं बैठा और वहां बैठ गया फिर 3 बजे से जाकर, और वो 3 बजे से लेके तो 11 बजे तक मुझे पता ही नहीं वहाँ क्या क्या हुआ, वहाँ क्या क्या चला, बस मतलब आंसू आ रहे थे कंटिन्यूअस, मतलब जो कुछ मैंने पढ़ा था वो मुझे वहां सब कुछ दिखने लगा, और जैसे कि जो दिव्य ज्योति है, जो भगवान सामने खड़ा है, वो उसने क्या बोला वो मुझे याद नहीं, वो 30 नवंबर 2003 पहली मुरली अव्यक्त बाप दादा से सुनी, पहली मेरा जन्म ही भगवान की दृष्टि और बोध के द्वारा हुआ वही पर जन्म हुआ, बस उसी हॉल में वही जन्म स्थान है, वहीं मैं बैठा रहा हूँ और बहुत आंसू आता, और जैसे कि जैसे गीता के, मुझे मेरी बहन ने कहा था वो हिंदी में चलेगी, वो हिंदी सुना ही नहीं आ रहा था, जैसे गीता के अहम आदित्य मज्जस, गीता के जो जो श्लोक है वो सब जैसे बाबा बोल रहा है, मया तद्मिदम सर्वम जगत व्यक्ति मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि, ये सब मेरा, मतलब वो गीता के श्लोक सुना ही आ रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा है, वो मुरली क्या चल रही है, वो क्या हो रहा है, वो कुछ पता ही नहीं चल रहा है बस, और मुझे ऐसा लगा कि भगवान कह रहा है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ, मैं हूँ वो इसको ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ,
मैं जानू यार
मतलब वो ऐसा हुआ कि मुझे ऐसे डर लगने लगा, फिर जैसे मुझे आंसू आ रहे थे, कोई देख ना ले, आश्चर्य की अवस्था जैसे बहुत, अभी कहा 3 बजे से लेकर 11 बजे तक क्या हुआ, कब मुरली चली और कब बाबा आए और कब क्या हुआ, कुछ खबर ही नहीं, केवल आंसू, इतने आंसू, और मतलब जैसे मुझे लगा जब मैं रूम पे गया कि मिल गया, मतलब इतना कि जो मुझे अपने ही वाक्य याद आए कि मैंने अपने पिताजी से कहा था कि मुझे अगर भगवान खुद रोके तो ही मैं रुकूंगा, तो मुझे लगा कि ये वही है, तो इतना मतलब ऐसा मैं कितने महीनों के बाद, कितने वो 8-10 महीना वो संघर्ष चालू था पूरा विरोध, उसके बाद में थोड़ा सोया, दूसरे दिन तो मुझे इच्छा ही नहीं थी कुछ कहीं जाने की, फिर भी वो बहन जी साइट सीइंग के लिए ऊपर लेके आई घुमाने, और कहा हॉस्पिटल के गेट के सामने खड़े रह के कहा ये हॉस्पिटल है, तब मुझे स्मरण आया कि मैं भी डॉक्टर हूँ तब मुझे याद आया कि मैं भी, तो तुरंत मैंने ढूंढा कौन है इंचार्ज इधर का, मैंने प्रताप सर की कैबिन में गया, मैंने कहा अभी मुझे अभी ज्वाइन करना है अभी इधर ही तुरंत, उसने कहा तुम कौन हो, कहाँ से आए, कौन सा सेंटर है, उस लेटर लेके आओ, मैंने कहा क्या है, कौन सा लेटर है, कहाँ से लाऊ तो वो वापस गया और वापस फिर घर पे बताया कि संन्यास कैंसल तो गणपति पानी से बाहर आ गया फिर खुशियां छा गई सब जगह, वो तो एकदम मेरी माताजी एकदम खुश, पिताजी खुश, पर मैंने कहा मैं माउंट आबू जा रहा हूँ और वहां में, पर उन्होंने कहा वहां तुम जॉब करना, पर मैंने कहा ठीक है करूंगा तो फिर मैं 2-3 दिन में ही नीचे आया शांतिवन में वापस, कुछ दिनों के बाद दिसंबर में 15-10 दिन में ही वहां, पहले दिन आते ही व्हाइट ड्रेस पहन खरीदा बैच पहना, जो व्हाइट तब पहना वो अब तक पहना हुआ है, और फिर ऊपर आया, ऊपर आते आते भी ऐसे कि मुझे पता नहीं था कहाँ जाना है कैसे रहना है। एक भाई मेरे साथ था बहुत पुराना प्रेम भाई नागपुर का, बोले कहाँ जाना, मैंने बोला ग्लोबल हॉस्पिटल, रहोगे कहाँ, मुझे बोला मुझे पता ही नहीं कहाँ रहना है, और बोले कपड़े एक ही कुर्ता है, चप्पल वो भी टूटी हुई। तो ऐसी हालत में जब हॉस्पिटल आया तो प्रताप सर ने कहा कि तुम्हारे कपड़े, में कपड़े तो है नहीं, फिर वो डॉक्टर कनक और उसको बुलाया श्रीवास्तव सर को, इसको कपड़े दिला दो घनश्याम भाई को, फिर वो मुझे लेके गए और थोड़ा कपड़े दिला के दिए। पहला ही दिन, और मैंने पूछा डॉक्टर मुरली थे, उनको पूछा कि भाई यहाँ मुरली वगैरह होती है ना, मैंने सुना था ना, तो बोले अरे ये हेडक्वार्टर है यही तो होती है। मैं बोला अच्छा। तो मैंने बोला आप कितने बजे आते हो, बोले मैं 3 बजे आते हो, मैंने अच्छा, तो मैं भी उनके साथ दूसरे दिन 3 बजे, भक्ति का था ना आदत, तो ये एकदम और आया और तुरंत जैसे फर्स्ट डे से पुरुषार्थ कोलविल हो गया, वो वही हो गया फिनिश। और कैसे हुआ उसका मतलब, फिर मुझे पैसे चाहिए थे ना ये किताबें खरीदने के लिए, ऐसे मुझे मुंह में पानी आता था कि ये किताब खरीद तो ताकि कुछ समझे उसमें क्या है। और पैसे थे नहीं। पहला ही दिन सुशील भाई बैठे थे यहाँ, उसके बाजू में मैं जाके बैठा, उधर श्रीमंत सर, हम तीनों इधर बैठा, और ओम शांति भवन में दत्त प्रकाश मणि दादी, पहली दिन पहला ही महावाक्य, अब तक जो पढ़ा है मीठे बच्चे, अब तक जो पढ़ा है भूल जाओ। मैंने पीछे देखा किसको कह रहे, मुझे ही तो कह रहे हैं क्या। सुशील भाई इधर, श्रीमंत सर उधर, और मैं उधर, पहले दिन से ही मतलब, और वो इतनी खुशी, इतना नशा, क्या बताऊं, वो मिल गया बहुत मतलब, और वो बताने से भी मुझे डर लगता था, किसको बताऊं, किसने मुझे पूछा भी बीच में, कब से हो गया मैं यहाँ, कब से, मैंने कहा अभी एक महीने से यहाँ पहुंच गया, फिर मुझे और डर लगा कि ये वापस भेजना दे। मैंने कहा 3 महीने से, किसने कहा 3 महीने में यहाँ पहुंच गया, मैंने कहा 6 महीने, फिर और बढ़ा दिया मैंने, फिर कहा 1 साल से, हाँ फिर ठीक है। फिर डर था कि ये भाई ये क्या है, कोई ऐसा नहीं कहेगी इतना जल्दी इधर कैसे आ गया, वो कौन सा सेंटर, वो तो बहुत मुश्किल प्रश्न था मेरे लिए, सेंटर कौन सा बताऊं अब ये लोगों को, वो भी डर लगता था ये लोगों को बताऊं क्या। हाँ उसको आंसू आ गए जो, तो ये यहाँ आ गए, यहाँ फिर 1.5 साल रहा, फिर गया, फिर आ गया 10-10-10 को वापस, तब से अभी इधर हूँ, 10-10-10 को इधर वापस, 5 साल बाहर रहा।
मैं सर पापा को इधर लाए थे,
एक बार आए हैं,
अभी खुश है
माता जी, तो अभी ऑलमोस्ट ज्ञान में ही है। अच्छा
माता जी तो आती,
हाँ आती है, बीच में आए थे ना, पिताजी एक ही बार आए, वो तब आए थे, बाद में नहीं आए कभी, अभी आएंगे पर, हाँ पर पिताजी अभी तो एक ही बार आए हैं, वो भी तब मुझे लेने आए थे, तो बहुत अच्छा लगा था उनको इधर एक बार जब आए थे, उसके बाद नहीं आए कभी, आएंगे
लेकिन यार संतुष्ट रहो ऐसे भी,
हाँ वो आए तो नहीं, वो ठीक है, खुश है, खुश है, मतलब बहुत ऐसा ये नहीं,
आप अपने पास ही बुलाइए,
हाँ वो आएंगे तो उनको पार्ट जब आएगा तो आएगा। हाँ वो ये था ना, एकदम भगवे वस्त्र तो नहीं है, एटलीस्ट डॉक्टर के कपड़े तो पहने हैं, वही उन्होंने कहा था, वो उनको तो वही, मैंने अपने कमरे में इतना बड़ा विवेकानंद का फोटो लगा के रखा था ऐसे भगवा वस्त्र, तो उन्होंने एक एक साधु आया था, बोले ये बनना तेरे भाग्य में नहीं है, मैंने बोला मैं यही बनूंगा, सन्यासी ही बनना है, तो उनको ये तो था ना एटलीस्ट भाई वो भगवे वस्त्र पहन के वो भिक्षा तो नहीं मांग रहे हैं, तो कम से कम ये डॉक्टर तो है, तो ठीक है कमीशन।
Thank you.